आइए प्रार्थना के लिए हमारे सिर को झुकाएं। हमारे पिता, हम आज सुबह आपको धन्यवाद करते हैं इस भव्य समय के लिए जिसमें फिर से एक साथ हो रहे हैं और प्रभु के वचन के खुलने पर जो यहाँ ये हमारे सामने रखा है, और अब प्रार्थना के साथ ये पवित्र आत्माओं से ले लेगा जो परमेश्वर है और हमें हमारे लिए आजाद करेगा जिससे हम आज इस आराधना के स्थान को आनंद से भरे हृदय के साथ छोड़ते हुए जा सके। आपके छुटकारे की महान सामर्थ को देखें प्रभु, कैसे ये बंधुओं को छुड़ाता है और उन्हें आजाद करता है, हमें ज्ञात करवाता है जो बातें थी और जो है और आने वाली है, और हम बस इन चीजों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीष देंगे जैसे हम अब आपके वचन का एक साथ अध्ययन करते हैं, और जब हम यहाँ से जाते हैं होने पाए ये जो हमारे हृदय में बोला गया, जैसे कि हम रास्ते में जा रहे हों हमारे हृदय भीतर से उत्तेजित हो रहे थे जब वो पवित्र आत्मा ने हमसे बात की जब हम मार्ग में थे। आज हरेक हर कहीं सेवक को आशीष देना, आपके दास जो इसके लिए खड़े हैं जो आपकी सच्चाई है, बीमारों के लिए उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए, पीड़ित लोगों के बीमार शरीर को चंगा कीजिए। प्रभु हम मांगेंगे कि आज लोगों के बीच में जाएं और उस पहले से ठहराए बीच को ढूंढकर वहां से बाहर निकालेंगे प्रभु, और इसे किसी तरह से पास लेकर आएंगे जब वो उजाला मार्ग पर गिरेगा प्रभु, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि समय निकल रहा है, सूरज तेजी से पश्चिम में डूब रहा है, तब जल्द ही ऐसा होगा कि समय और नहीं रहेगा। समय और अनंत काल एक साथ मिश्रित होंगे जब परमेश्वर और उसके लोग एक साथ मिश्रित होते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उस समय कि हम उन लोगों के बीच गिने जाएंगे जो मसीह के अंदर मिश्रित होंगे जिसे उसकी दुल्हन कहा जाता है। हमारी सहायता करें आज जैसा कि हम तैयार होते हैं, नहीं जानते हुए कि कल क्या होगा, लेकिन हम कुछ भी ग्रहण करने के लिए तैयार हैं प्रभु, जहाँ तक हम जानते हैं कि जो आपके पास हमारे लिए है हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। हम यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की महिमा के लिए इस आशीष को मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। मैं आज सुबह निश्चय ही खुश था जब मैं अंदर गया और देखा कि लोग परमेश्वर की सेवा के लिए एक साथ इकट्ठे हुए थे, और अब हम आज रात के लिए घोषणा कर रहे हैं, आज रात को चंगाई की सभा होगी, हम आज रात बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। अब कुछ ही क्षण पहले वे जैसे ही मैं अंदर आया, मेरे बेटे बिल्ली ने मुझे बताया, कहा यहाँ पर एक सज्जन व्यक्ति है, यह बस एक दीन पुरुष है जो बहुत दूर से गाड़ी चलाकर आया है, और कहा मैंने उसे कमरे में बैठाया हुआ है पिताजी, मैं कल रात देरी से आया और रविवार के सुबह के विषय पर ज्यादा अध्ययन नहीं किया जिस पर मैं आज सुबह बात करने जा रहा था, इसलिए मैंने कुछ लिखी हुई बातों को उठाया जो मैंने लिख कर रखा था, जिसे मैंने कुछ भाइयों से बोलते हुए सुना था, और वहाँ से उस विषय को लिया ताकि आज सुबह रविवार स्कूल के लिए पाठ हो, और जब हम तैयार होते हैं और शाम की सभा के लिए तैयारी करते हैं, और बिल्ली ने कहा वहाँ एक व्यक्ति है जो बीमार है, कहा मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ जाकर और उसे देखें। तो मैं अभी उस कमरे में गया था, और एक भाई जो लगभग मेरी उम्र का था और उसकी पत्नी वहाँ बैठे हुए थे, और पवित्र आत्मा ठीक अभी कमरे में हमारे बीच उतर कर आया। जरा सोचे, केवल चंगाई की सभा के बारे में बताया ही था और वहाँ पर वो था, देखा, और इस भाई ने जो कुछ किया था उसने उसके बारे में बताया, और वो क्या करते आ रहा था और उसकी परेशानी का कारण क्या था और वो कहाँ से था और उसके बारे में सब कुछ बताया, और कमरे में एक बहुत ही बड़ी काली छाया मंडरा रही थी, बाद में ये धुंधली 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 और धुंधली होती जा रही थी, तब पवित्र आत्मा ने नियंत्रण ले लिया। अब मैं सोचता हूँ कि वो व्यक्ति यहीं कहीं यहाँ पर पीछे होगा, वो और उसकी पत्नी हो सकता है इमारत के अंदर नहीं आ सके होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कुछ भी हो वे सभा के लिए रुकेंगे। वे वहाँ पास ही यकीमा वाशिंगटन के आसपास से आए हैं, और वे गाड़ी चलाकर आए हैं, और वो एक सुसमाचार का सेवक है, लेकिन बस परमेश्वर के अनुग्रह को वहाँ देखता हूँ जहाँ वो मनुष्य उस संस्थान में रहा था और इसका इलाज इत्यादि हुआ था, पवित्र आत्मा इस सब को प्रकट कर रहा था। जब वो डॉक्टर उस मनुष्य के लिए वो सब कुछ करने के लिए कड़ी कोशिश की जो संभवत है, जो वो कर सकता है, लेकिन इसने बस परमेश्वर से विशेष छोटे से स्पर्श को लिया ताकि उस बहाव को बदल दे। करंट के द्वारा इलाज ठीक बात है, लेकिन ये एक प्रकार से जैसे हम कहेंगे अंधेरे में एक निशाना लगाना। आप जानते हैं आपकी या आपकी हालत और भी खराब कर सकता है। देखो, क्योंकि आप हर एक चीज जो कुछ भी आप जानते हैं उसे भूल गए हैं, तब वे उस दवा को आप में डालते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर कैसी उसकी कृपा और दया है, और इससे पहले कि मैं उसके लिए प्रार्थना का एक शब्द भी कहूं, यह पहले से ही खत्म हो गया था। देखा, इसने बस परमेश्वर की कुछ विशेष चीज को ले लिया, इसे करने के लिए विशेष स्पर्श को लिया। मुझे यह कहना नहीं चाहिए, जी हाँ, मैं वहाँ पर देखता हूँ, अब व्यक्ति की ओर देखता हूँ, तो मैं नहीं जानता कि आप इसे आज कर पाते हैं या नहीं। मैं वहाँ उस देश में जहाँ इस सप्ताह से रह रहा था, मैं वहाँ अपने मित्रों को पसंद करता हूँ। ये इन बड़ी सभाओं से पहले यह एक छोटी छुट्टी है, आप देखते हैं, और मैं घर आया ताकि वहाँ जाकर इन भाइयों के साथ गिलहरी के शिकार को जाऊँ। और यह परिवार, मेरा मतलब वे परिवार जिनके साथ मैं वहाँ रहता हूँ, वो निश्चय रूप से प्रेमी लोग हैं, और वो मनुष्य एक सच्चा भाई मित्र है जो वे हैं, और उनमें से एक शिकारी कुत्ते के बड़े प्रेमी हैं, और उसके पास एक उनसे वहाँ भरा हुआ जानवरों का बाड़ा है, और मैंने वहाँ देखा कि सबसे छोटा सा खूबसूरत शिकारी कुत्ता था, एक छोटा सा साथी जिसके बारे में मैंने बताया था कि आधे कुत्ते ऊंचे थे और दो कुत्ते लंबे। आप जानते हैं कि वे घर के चारों ओर दौड़ रहे थे, और मैंने सोचा, ओह, क्या ऐसा ही कुछ हमारे पास होने के लिए जो पसंद नहीं करेगा। और निश्चय ही एरिजोना से बाहर आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, वे कांटेदार पेड़ में फंस जाएंगे और जिससे वे मारे जाएंगे। तो तब मैंने भी कहा, आपके पास यह नहीं हो सकता है, वे देश के उस हिस्से में कुत्तों का उपयोग नहीं करते हैं, कारण वे ठीक है, वे बस उनका उपयोग नहीं कर सकते, वहाँ का मौसम कांटेदार पेड़ के साथ भरा पड़ा हुआ है और उससे वे मारे जाएंगे। और फिर सच में वहाँ पर शायद एक शिकारी कुत्ता, एक भेड़िया या जो कुछ और तो उसे मार डालेगा, किसी भी तरह वह बाहर निकलते हैं तो। सो तब इस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बस इसे ले सकते हो, लेकिन मैं उसे नहीं ले सका। मैंने इसकी सराहना की, आकर देखें, ये उसके पसंदीदा कुत्तों में से एक था, और इस व्यक्ति की एक प्यारी छोटी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे हैं। और एक दिन उसने अपनी कार से बाहर निकलना आरंभ किया, और उसके पास ये एक पुरानी कार थी, और छोटा कुत्ता लगभग केवल इतना ही लंबा था, केवल एक छोटा सा बच्चा ही था, और वो सीधे उसके ऊपर से उस कार को दौड़ा कर लेकर गए। वो पुरानी कार छोटे कुत्ते के ऊपर से चली गई यहाँ उसकी पीठ पर से, और इसे मसल दिया जहाँ वे रास्ते पर के पत्थर उसके बाद उसके यहाँ नीचे उसके छोटे से पेट में गड़ गए थे, आप जानते हैं। और वो छोटी पत्नी उस छोटे कुत्ते को पशु चिकित्सक लेकर जाने की बजाय, निश्चय ही वो पशु चिकित्सक बस उसे वहाँ सीधे सुला देगा फिर और उसे मार डालेगा। देखा, वहाँ मेरे साथ एक और नौजवान व्यक्ति था, और जैसे ही वह वहाँ उठकर गया, कहा, यदि ये मेरा कुत्ता होता था तो मैं इसे गोली मार देता। कहा, ऐसा ही है, क्या इसे इस तरह तड़पने दें? मैंने कहा, ठीक है, इसे गोली न मारें। मैंने कहा, थोड़ा इंतजार करें। सबको पीछे किया और चला गया, और इसके लिए प्रार्थना की। वो छोटा कुत्ता बरामदे तक मेरे पीछे चलने लगा, और वो, जी हाँ, वो, देखा, जो कुछ भी चीज की इच्छा करके जब आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास करें कि आपको यह मिल गया है, वो तुम्हारे पास होगा, तुम्हें दिया जाएगा, जो कुछ भी चीजें हैं। यही हमारा प्रभु परमेश्वर है या नहीं है? वो अद्भुत और प्रशंसनीय है, और हम निश्चित रूप से आज सुबह उससे प्रेम करते हैं और उससे अपेक्षा करते हैं, और ये जानते हुए। एक दिन देखा एक बूढ़ा दंपति जो यहाँ के समूह के बहुत ही अच्छे सदस्य के माता और पिता हैं, और उनकी माँ, ओह, मुझे लगता है कि वह 100 वर्ष के करीब है, और उनके पिता भी, और लगभग 12 वर्षों से यह मनुष्य कभी भी नहीं हिला, वो उसकी पीठ पर था, बस वो सीधे पड़ा रहा, या उसने कभी करवट नहीं ली या कुछ भी नहीं, 12 वर्षों से वहीं पड़ा रहा, वो बस बुढ़ापा। और उसकी माँ लगभग उसी उम्र की है, मुझे लगता है कुछ 100 के करीब, और दीन बूढ़ी स्त्री ने अब लगभग उसके मानसिक नियंत्रण को खो दिया है। वह सोच रही है कि जो कुछ उसके पास है कोई तो उससे लेकर जा रहा है। और मैंने टेबल की ओर देखा, हम सभी युवा और बूढ़े वहाँ बैठे हुए थे और मैंने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और मैं जिस महिला के साथ रह रहा था वो उसकी माँ और पिता थे और मैंने कहा, आप भी उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल हम में से प्रत्येक जन समझे। जरा इसे सोचें, कुछ क्षण के लिए इससे पहले हम पाठ को आरंभ करें, यही वो जगह है जहाँ आप जा रहे हैं। आप किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं सो आप जी सकते हैं, आप किसके लिए जी रहे हैं सो आप मर सकते हैं। क्या यह सबसे मूर्खता नहीं होगी यदि हम अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के प्रबंध को स्वीकार नहीं करते हैं? हम किस बारे में सोच सकते हैं, हमारे मन में क्या हो सकता है जो हमारा ध्यान आकर्षित करे किसी पर भी? क्या हो यदि आपके पास खुद के 100 मिलियन डॉलर होते हैं और आपका खुद का इंडियाना या कोई अन्य राज्य हो या यहाँ तक कि राष्ट्र हो या जहाँ तक सारे संसार से जो संबंधित है? आप लंबा जीवन जीते हैं, आपको भी उस पर आना होगा। देखा, और लगातार दिन प्रतिदिन हर समय जब आपका हृदय धड़कता है तो आप सीधे उस पर जा रहे होते हैं, समझे। आपके लिए कोई विजय नहीं है, आप हारने वाले पक्ष में हैं और आपको हारना है। लेकिन प्रतिज्ञा को याद रखें कि जो मेरे लिए अपना जीवन खो देता है वह उसे पाएगा। अब जीवन को खोजने से बढ़कर और खजाना क्या होगा, भले ही आपने सारे संसार को अपने लिए पा लिया हो, लेकिन यदि आप जीवन पाते हैं तो आपने सबसे बड़ी चीज को पा लिया जो आप पा सकते हैं। मैं चाहता हूँ, मेरी बाएं ओर देखा और फिर से देखा, ठीक अभी परमेश्वर के अनुग्रह का एक और चिन्ह। लगभग कुछ सप्ताह पहले मुझे फोन किया था और इस कलीसिया या इस देह के एक प्रेमी सदस्य ने, मैं इसे कलीसिया के रूप में और अधिक नहीं बुलाना चाहता हूँ, मैं इसे कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा, ठीक है आप किस कलीसिया से संबंध रखते हैं? मैंने कहा, मैं संबंधित नहीं हूँ। आप किस संप्रदाय से संबंधित है? मैंने कहा, कोई नहीं। कहा, तो आप किससे संबंध रखते हैं? मैंने कहा, एक राज्य से। एक राज्य और एक आत्मा के द्वारा हम उस राज्य में बपतिस्मा लेते हैं। एक आत्मा के द्वारा सब इस राज्य में। यीशु ने कहा, प्रार्थना करो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा धरती पर पूरी हो जाए जैसे आसमान में है। अब वो एक दिन रूपांतर पर्वत से पहले खड़ा था, उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, वे मृत्यु को नहीं चखेंगे जब तक वे एक राज्य को सामर्थ में आते न देख लें। यह पूर्व छाया थी, जैसा कि हम इसमें से होते आए हैं, रूपांतर पर्वत। और बाइबल ने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। तो यह एक राज्य के लोग हैं जो इसका दावा करते हैं कि ये उनका घर नहीं है, यह हमारा घर नहीं है। हम राजा के आने के लिए देख रहे हैं जिसने राज्य की स्थापना की है। मुझे एक आपातकालीन मामले में बुलाया गया था, एक पुराना भाई जो मेरे लिए एक पिता की तरह रहा है, और वो, मैं उसे बहुत लंबे समय से नहीं जानता था, लेकिन मुझे वो दिन याद है जब मैं उसे यहाँ पानी के बपतिस्मे के लिए लेकर आया था, और वो व्यक्ति जल्द ही 91 वर्ष का हो जाएगा। और उसकी प्यारी पत्नी ने मुझे फोन किया और वो एक नर्स होने के नाते बताया, उसे पूरी तरह से हृदय का दौरा पड़ा था। इसके अलावा उसे, ओह मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, हृदय का दौरा, कोरोनरी दिल का दौरा, धन्यवाद, कोरोनरी दिल का दौरा और एक पूर्ण रूप से दिल का दौरा। डॉक्टर ने कोई आशा नहीं जताई और व्यक्ति मर रहा था और उसने मुझे बुलाया। और मैंने अपनी छोटी पुरानी फोर्ड कार को लिया और ओहियो के लिए सड़क की ओर जाना आरंभ किया जितना जल्दी मैं कर सकता था। और मैं नहीं जानता, मेरे पहियों में से एक पहिया उसके क्रम में से बाहर आया था, इससे टायर बाहर की ओर निकल आया था। और इसलिए मैं वहां जा रहा था, एक तेल भरने के स्थान की ओर जा रहा था। लगभग 11 बजे थे, मैं उसके बारे में चिंतित था, मैं उससे प्रेम करता हूँ और मैं जानता हूँ यदि ये ऐसे ही जारी रहता है, प्रभु आने में देरी करता है, क्योंकि जल्दी या देर से हमें एक दूसरे को ऊपर उठाना होगा। लेकिन अब यह रैप्चर को आघात नहीं पहुंचाएगा, समझे? नहीं, उसके बाद वे पहले आएंगे। उनके पास सौभाग्य था जो चले गए हैं, वे पहले आएंगे। देखा देखा, हम जो जीवित हैं और बने रहते हैं प्रभु के आगमन के लिए, वे जो सोए हुए हैं उन लोगों के लिए बाधित या रुकावट नहीं होंगे। परमेश्वर की तूरी फूकी जाएगी। मसीह में जो मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। फिर जब हमारी आंखें हमारे प्रियजनों को देखती है, तो हम एक पल भर में पलक झपकते ही बदल जाएंगे और उनके साथ एक साथ उठा लिए जाएंगे। देखा, जो लोग पहले जाते हैं वे जीवित लोगों से ज्यादा सौभाग्य प्राप्त लोग हैं। जैसे ही मैं तेल भरने के स्थान से बाहर निकला, तब 11 बजे थे। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, उसके बारे में चिंता मत करो, तुम फिर से सड़क पर उससे अपना हाथ मिलाओगे और वह कलीसिया में आएगा। वो मनुष्य जो 90 वर्ष का है मर रहा है। जब मैं लीमा के अस्पताल में उसकी पत्नी और उसके प्रियजनों से मिला, तो उन्होंने मुझे उसकी परिस्थिति के बारे में बताया। मैं अंदर गया, उसे बाह पर देखा। उसने कहा, लेकिन उसके साथ कुछ तो अजीब बात हुई। कहा, वो 11 बजे से ठीक होकर बदलना आरंभ हो गया है। ठीक है, और मैं, प्रभु ने उन लोगों को बहुत सारी चीजें दिखाई थी। वे जानते हैं कि मैंने बस इतना कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ये बताया था, वह बदलना आरंभ हो गया है। वे जानते थे कि मैं उन्हें सच बताऊंगा। सो पिछले रविवार जब मैं लुइसविले में ब्लू बोर कैफेटेरिया में जा रहा था, जहां तक मुझे लगता है कि इस सभा के 80% लोग रविवार की दोपहर को भोज के लिए इकट्ठा हुए थे, तो मुझे सड़क पर आते हुए किसने देखा? मैं आपको बताता हूँ, मेरा हृदय व्याकुल हो गया जब मैंने अपने भाई डॉज को सड़क पर आते हुए देखा। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बताया था, मैंने सड़क पर उससे हाथ मिलाया। तब मैं यहाँ पिछले रविवार की रात के लिए वापस आ गया और एकता के विषय पर बात की, समय के चिन्ह का एक होना। तो और फिर वह उसे पूरा करने के लिए लेकर आया, बस उसने जो कहा, और यहाँ वो आज कलीसिया को यहाँ हमारे द्वारा तैयार करता है परमेश्वर के अनुग्रह के एक चिन्ह के रूप में। तब तंबू के नीचे उससे हाथ मिला रहा था, वो ऑक्सीजन तंबू के नीचे था। मैंने कहा, भाई डॉच, तुम ठीक हो जाओगे, मैं आपको फिर से कलीसिया में देखूंगा। यही यहोवा यो कहता वाला वचन है। देखा, वहाँ वह कलीसिया में बैठे हुए हैं, ठीक यहाँ अभी, भाई डॉच। यदि मैं गलत नहीं हूँ, तो वो सेवक मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, कुछ क्षण पहले पवित्र आत्मा वहाँ आया और इन सारी चीजों को प्रकट किया। उसे बताया यह कैसे हुआ और उसे बताया कि उसने क्या किया है, यह कैसे घटित हुआ, यह कैसे पूरा हुआ, तब से लेकर जो कुछ भी होते आ रहा है, यहाँ तक कि उसके परिवार का चाल चलन और उसके बारे में सब कुछ, और उसे बताया यह पूरा हुआ है। और वो सेवक ठीक यहाँ पर दाएं हाथ पर बैठा है। क्या आप केवल अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे श्रीमान? वे रहे वहाँ, वो और उनकी पत्नी, बिल्कुल ठीक ठीक अभी, यहाँ भाई डॉज बैठे हैं अभी ठीक वहाँ पर। ओह प्रभु, क्या वो अद्भुत नहीं है? वो बातें जो थी, जो है और जो होने वाली है, 1, 2, 3 गवाहियाँ, वे चीज जो थी, जो आपने किया है, वे चीजें जो अभी जारी है और चीजें जो होने जा रही है, और हर समय बिल्कुल बिल्कुल वचन के अनुसार है। यह केवल परमेश्वर ही कर सकता है। ओह, क्या हम इन चीजों के लिए सबसे ज्यादा खुश नहीं हैं? अब मेरा थोड़ा अतिरिक्त समय लेने का जो कारण था, बिली को अपनी पत्नी और बच्चे को लाने के लिए जाना था, और उसने कहा, पिताजी प्रचार शुरू मत करना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, तो मैं सोचता हूँ कि वह अब वापस आ गया है। और किसी भी तरह से मेरे पास बहुत समय है, और मैं कोशिश करूँगा आपको यहाँ पर बनाए रखकर इन 4 घंटों तक नहीं थकाऊं, और इसे 35-40 मिनट का प्रचार बनाऊं, आप देखें, और इसे बनाए रखने की कोशिश करूं। और मैंने शिकागो में एक बार टिप्पणी की थी, मैंने इसे 30 मिनट या कुछ 25 मिनट में पूरा किया, और पिछले रविवार की रात को केवल 45 मिनट में पूरा किया था। बिली ने कहा, आप वास्तव में उन्नति कर रहे हैं पिताजी, मुझे एक तरह से इसके लिए आप पर गर्व है। ठीक है, हो सकता है आज सुबह इसे कुछ रविवार के स्कूल की तरह बनाने के लिए मैं आपको ज्यादा समय तक नहीं रोके रखूंगा। फिर आप बाहर जाकर और अपना दोपहर का भोजन कर सकते हैं और प्रार्थना करें और आज रात की चंगाई की सभा के लिए वापस आ जाएं। हम आज रात प्रार्थना की पंक्ति बनाएंगे और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। अब यदि आप यहीं कहीं कोई भी कहीं भी किसी व्यक्ति को जानते हैं जो बीमार है और प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप उन्हें आज रात यहाँ लेकर आएं, समझे। यदि आपको उन्हें किसी भी तरह से लेकर आना है तो उन्हें यहाँ लेकर आएं, समझे। यही मुख्य बात है कि उन्हें आज रात यहाँ पर लेकर आएं। हम सभी एक साथ मिलेंगे। इसी तरह से लोगों के बुलाने पर लोगों के पास जाना मुश्किल होता है, एक स्थान के बाद दूसरे स्थान पर जाना, तो आप किसी को छोड़ देते हैं और वहाँ एक को खराब महसूस होता है। लेकिन यदि मैं इन सबको एक स्थान पर ला सकता हूँ तब मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। अब यदि लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, वे आप कहते हैं क्या वे चाहेंगे? ओह, निश्चय ही उनके लिए प्रार्थना की जाएगी, उन्हें यहाँ लेकर आए। परमेश्वर चाहता है हम यहाँ पर सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए होंगे, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि वो तीसरा खिंचाव आगे बढ़ना आरंभ हो रहा है। आप देखना मेरे अंदर और मैं सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अब आइए आज सुबह एक जाने पहचाने पुराने वचन में जाएंगे, जहाँ मैं कल रात को जल्दी से उठ गया। मैं बहुत नींद में था और इसके साथ बताने के लिए कुछ और वचनों को लिखा, और एक तरह से सम्मान पूर्वक लेते हुए मैंने कुछ भाइयों को एक बार कहते सुना इस वचन का प्रयोग करें, और मैंने सोचा, मैंने इसे लिखकर रखा। मैंने सोचा ठीक है, मैं सोचता हूँ कि मैं इसे लिखकर रख दूंगा क्योंकि यह काम में आ सकता है। हम कई बार ऐसा करते हैं। मैंने देखा आप में से बहुतों के पास कागज का एक टुकड़ा होता था और एक सेवक कुछ तो कह सकता है और फिर आप उस मुख्य बात तक पहुंचते हैं, तब कुछ तो आपके अंदर खुलना आरंभ होगा और फिर यदि पवित्र आत्मा से कर रहा है तो आप ठीक वहां उसी बिंदु के ऊपर एक संदेश को बनाना आरंभ कर देंगे, प्रभु के लिए एक संदेश। और यह अच्छी बात है, मैंने सभाओं में देखा है जहां कहीं भी आप जाते हैं बस प्रचारक और लोग लिखते रहते हैं। यह ठीक बात है, हम यहाँ हैं, यही है वो जिसके लिए हम यहाँ पर हैं, ताकि इन मार्गों पर साथ ही एक दूसरे की सहायता करने की कोशिश करें। और अब प्रकाशित वाक्य के तीसरे अध्याय को खोलें, कलीसिया काल पर, कलीसिया काल को दोहराते हुए। लेकिन अब हम वहाँ पर हैं। जी हाँ, मैं इस एक वचन को ले सकता हूँ और पवित्र आत्मा के साथ इस पर 100 वर्ष के लिए प्रचार कर सकता हूँ और कभी भी इसमें से उस बात को बाहर नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि इस एक वचन में बाइबल के सभी अन्य वचनों की तरह ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। और मैं इस विषय को आज सुबह लेना चाहता हूँ, मैं कैसे जय पा सकता हूँ। अब मैंने इसे चुना क्योंकि मैं सोचता हूँ यह एक ऐसा समय है कि हमें कभी भी बेदारी की आत्मा को मरने नहीं देना चाहिए, हमें बेदारी में बने रहना होगा, लगातार जागृत हर दिन। पौलुस ने कहा कि उसे रोज मरना है जिससे मसीह जी सके, और हमें कभी भी उस बेदारी को हमारे अंदर मरने देना नहीं चाहिए। अब प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय और 21वें पद के साथ आरंभ करते हुए हम इसे पढ़ते हैं, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन में बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन में बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। क्या आपने ध्यान दिया उसकी व्यवस्था को? देखा, मेरे साथ मेरे सिंहासन में बैठेगा, ना ही मेरे सिंहासन पर, मेरे सिंहासन में, यही उसके अधिकार में है, समझे। और वहाँ जैसे मसीह शासक करने वाला है, इस समय पर सिंहासन का शासक करने वाला जो परमेश्वर का पूर्ण अधिकार है, वैसे ही कलीसिया उसके साथ रहेगी, दुल्हन उसके साथ उसके सिंहासन में होगी, संपूर्ण अधिकार में, समझे, ना ही मेरे सिंहासन पर लेकिन मेरे सिंहासन में। देखो, जहाँ तक उसका अधिकार होता है, एक सिंहासन में एक अधिकार होता है और एक अधिकार बस वहाँ तक होता है जहाँ तक उसकी सीमाएं पहुँचती हैं, और यह अनंत काल से अनंत काल तक है। जरा इसके बारे में सोचो। अब जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो इसका मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों के साथ यहाँ आकर मिलना नहीं है, जो मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, लेकिन यदि मुझे ऐसा करने का मौका मिलता है तो मैं आपके घर आऊंगा और आपके साथ हाथ मिलाऊंगा और आपसे बात करूंगा और बैठकर आपके साथ रात का भोजन करूंगा और पेड़ की छाया के नीचे और बात करूंगा और कुछ समय की संगति करूंगा। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ एक विशेष उद्देश्य के लिए होते हैं। यह सुधार का घर है, यह सिंहासन है, यह परमेश्वर का सिंहासन है और न्याय परमेश्वर के घर से आगे जाता है। और यहाँ वो जगह है जहाँ हम एक साथ आते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम में इकट्ठा होते हैं, क्योंकि केवल मसीह लोग ही प्रेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम पवित्र आत्मा के एक नेतृत्व के नीचे हैं, पवित्र आत्मा हमारे बीच है और हम यहाँ पर हैं हमारे बीच का लेखा लेने के लिए, यह देखने के लिए कि कहाँ हमारी छोटी छोटी गलतियाँ हैं, हमारी कमियाँ, और हम किस तरह से समझ सकते हैं कि हमें कहाँ होना चाहिए, हमें कहाँ पर अभी होना चाहिए था, हम कहाँ पर हैं और कहाँ हमें होना चाहिए। और यही है वो जो हम अध्ययन करते हैं। सेवक अपने लोगों के लिए उन स्थानों पर अध्ययन करते हैं, जब वे लोगों को कमियों में देखते हैं तब वे उस पर बोलना आरंभ करते हैं। अब जल्द ही मैं सोचता हूँ कि कलीसिया हो सकता है इस समय पर एक कदम थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए। आज सुबह मैं इसे करने की योजना नहीं कर रहा हूँ इन चीजों को दिखाते हुए, लेकिन मैं सोचता हूँ जल्द ही परमेश्वर ने चाहा तो इससे पहले हम उन तुरहियों पर प्रचार करें। मैं चाहता हूँ मैं कलीसिया को एक ऐसे कुछ बातों को लेकर आऊँ जिसे आपको जानना चाहिए, मैं अब सोचता हूँ। और अब हम इस पर बात कर रहे हैं, जय पाना, वो शब्द जय पाना, निश्चित रूप से आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। आपके पास जय पाने के लिए कुछ तो होना है। और यह कलीसिया काल जिसे पवित्र आत्मा यहाँ पर जिसके बारे में बता रहा है, लौदिकिया कलीसिया काल में, जैसा कि हम अभी इसमें से होकर रह रहे हैं, एक फटकार की आवश्यकता है। लौदिकिया को फटकार किया जाना था क्योंकि ये मसीह के प्रति भिन्न है। इसने उनके युग में मसीह को बाहर रख दिया था और मसीह बाहर था और वापस अंदर आने की कोशिश कर रहा था, जो प्रेम है। और उसे अपने घर से बाहर रखने के बाद वो वापस अंदर आने की कोशिश कर रहा था और कहा, वह जो द्वार को खोलेगा मैं उसके पास आऊंगा। समझे, कलीसिया ने पूरी तरह से उसे बाहर रखा था। लेकिन अब ध्यान दें, उसकी पुकार यहाँ कलीसिया के लिए नहीं है, वो जो जय पाता है, देखा, ना ही कलीसिया, वो शी, वो कलीसिया होगी, देखो कलीसिया देह, लेकिन ये वो ही जो जय पाता है वो व्यक्तिगत होगा जो अब जय पाएगा। और लौदिकिया उस कलीसिया के पास आ रहा था। अब हम तब देखते हैं, जानते हैं कि यह लौदिकिया काल है, और यह जानते हुए कि इस काल को परमेश्वर से एक तेज फटकार की आवश्यकता है, इसे एक तेज फटकार की आवश्यकता है। और जब हमारे याजक लोग बहुत ही ढीले से और हल्के से लेने वाले होते हैं, जैसे हमारे कुछ बुजुर्ग दादाजी उनके पोतों के लिए होते हैं, वे जो भी कर रहे होते हैं वो सही है और वे हैं। इसके लिए इतना कुछ कहा गया है कि परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है, इतना तक वे परमेश्वर को बस एक बड़ा हल्के से बात को लेने वाला दादाजी बनाने की कोशिश करते हैं, आप समझे। लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो एक पिता है और धार्मिकता का पिता है, सुधार का पिता है, और प्रेम हमेशा सुधार करता है। देखा, प्रेम सुधार करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना अधिक चोट पहुंचाता है, यह फिर भी सुधार करता है। एक सच्ची माँ अपने बच्चे को सुधार करेगी, एक सच्चा पिता सुधार करेगा। देखा, यदि आप केवल ढीले से और हल्के से बात को लेने वाले हैं और इसे होने, मैं एक दिन वहाँ नहाने जाने के लिए एक पुराने, एक नीचे पड़े हुए पेड़ के गड्ढे में से होकर पार जा रहा था, या जिसे खोखला पेड़, जो अंदर से खोखला होता है, कहा जाता है, और मैं इस पेड़ के गड्ढे पर कूदा। बाहर से तो ये अच्छा लग रहा था, एक पुराने भरे हुए पेड़ के गड्ढे की तरह लग रहा था, लेकिन जब मैं उस पर कूदा, ओह, इसका एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया, यह पूरी तरह से सड़ा हुआ और हल्का था। मैंने कहा, इसी तरह से मसीह लोग बनते जा रहे हैं, वे पाप और अपराधों में इतने समय से मरे हैं, इतना तक कि वे हल्के बन गए हैं। वे कुल मिलाकर वजन को नहीं संभाल सकते हैं। वे नहीं जानते कि जय पाने का मतलब क्या है। और फिर मैंने इस विषय के बारे में सोचना आरंभ किया। जय पाना आप में जीवन को बनाए रखता है। जब जीवन बाहर चला गया तो यही है जो उस पेड़ के गड्ढे की उस परिस्थिति में लाता है। देखा, और इसे पहले से भी बदतर बना दिया जब ये डाली से जुड़ा हुआ था जहाँ पर जल था। और फिर वहाँ आप एक मसीह को लें जिसे एक मसीह होना चाहिए। परमेश्वर का जीवन उसमें से बाहर निकाल दें और वो अनुभव मसीह की सेवा करने का आनंद और एक कलीसिया में रहना जहाँ पर ऐसा चल रहा है वो तुरंत ही तब दो गुना सड़ने लगेगा, बिल्कुल जो ठीक इन चीजों के नीचे जी रहा होता है। इसलिए यदि हम समय के संदेश के पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं या कम से कम संदेश के इस भाग को, तो हमें निरंतर मसीह के जीवन में जीना चाहिए, समझे? क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो वहाँ ऐसे ही पड़े रहते हैं और जानते हैं कि ये चीजें जिन्हें आप करना चाहते हैं और आप उसे नहीं करते हैं। बाइबल ने कहा जो अच्छा करने के लिए जानता है और उसे नहीं करता उसके लिए पाप है। तब आप हल्के से लेने वाले सड़े हुए बन जाते हैं जब आप परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाते हैं। तो आप में जो कुछ भी है उसके साथ संघर्ष करें ताकि मसीह के जीवन में बने रहें जिससे आप फल लाने वाले बने। हम इस युग को देखते हैं जिसमें हम रह रहे हैं। यह सारे युगों में सबसे एक शानदार युग है। यह लौदिकिया युग सारे कलीसिया युगों में से एक सबसे शानदार युग है क्योंकि ये समय का अंत होना है और अनंतता का मिश्रित होना है। और फिर यह सबसे बड़ा पाप से भरा हुआ युग है। इस युग में पहले से भी कहीं अधिक पाप है और शैतान की शक्तियाँ के विरुद्ध लड़ना किसी भी युग की तुलना में कई गुना अधिक कठिन है। देखा, यहाँ पहले आरंभ के युग में एक मसीह कर सकता है, एक कलीसिया या मसीह से संबंध रखने पर उसकी घोषणा कर सकता है और इसके लिए उसका सर काटा जा सकता है, उसे मारा जा सकता है और वो उसके कष्ट से छूटकर और तुरंत ही परमेश्वर से मिलने जा सकता था। लेकिन अभी वो शत्रु कलीसिया के नाम पर आया है और यह बहुत ही भरमाने वाला है। यह सबसे बड़ा भरमाने वाला युग है। जब मसीह ने ऐसा कहा अंतिम दिनों में दो आत्माएं ये इतनी करीब होंगी, इतना तक कि यदि यह संभव हो सकता तो ये चुनो हो को भी भरमा दे। देखा देखा देखा, याद रखें मसीह ने अंतिम दिनों के लिए चुने हुए लोगों की बात की थी, समझे? यदि यह संभव होता तो यह उस चुने हुए को भी भरमा दे। बहुत ही नजदीक लोग वैसे ही जीते हैं। लोग एक साफ पवित्र जीवन जी सकते हैं, पाप से भरा नहीं, ना व्यभिचारी और ना शराबी और झूठे जुआरी। वे उससे ऊपर जी सकते हैं और फिर भी वे इसके साथ नहीं हैं। यह वो जीवन का युग है, मसीह का व्यक्तिगत जीवन, जहां उसके शरीर का रसायन जो उसके अंदर था, सबसे पहले धर्मीकरण के नीचे पानी का बपतिस्मा, दूसरा नए जन्म के नीचे जो वैसली का है पवित्रीकरण जो शुद्ध करता है, और तीसरा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के नीचे सेवा के अंदर उस पवित्र हुए पात्र को डालता है, समझे? उस शब्द पवित्र होना का अर्थ होता है, यह एक मिश्रित यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है साफ किया गया, सेवा के लिए एक और अलग किया गया, सेवा के लिए अलग रखा गया है। अब पवित्र आत्मा इसे सेवा में रखता है। देखा, और हम देखेंगे जब वो अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से चली जाती है तो वो सूखे स्थानों में चलता है। बिल्कुल ऐसा ही कलीसिया ने किया है, बैप्टिस्ट मेथोडिस्ट जो पवित्रता में विश्वास करते थे। उसके बाद यीशु ने कहा अशुद्ध आत्मा जो बाहर निकल गई इस कलीसिया देह में वो वापस लौट आती है और देखती है घर को सजाया गया, झाड़कर साफ किया गया है। शुद्ध रहना साफ जीवन है, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद यदि वो घर भरा नहीं गया है, कब्जा नहीं हुआ है, तब वो सात अन्य दुष्ट आत्माएं जो वो पहले था उससे भी बदतर और इस स्थान का अंतिम पड़ाव या ये पहले स्थान में था उसकी तुलना में सात गुना बदतर होता है। वे लूथरन से बेहतर बने हुए थे, उसकी तुलना में इसे होना है, ताकि वे उस प्रकाश को प्राप्त करें। और वे इसका अनुकरण करने से चूक गए, वैसे ही पेंटिकॉस्टल करेंगे। देखो, आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, घर को सजाया गया है। जैसा कि मैं किसी से एक दिन बात कर रहा था, कहा वे बहुत ही सावधान रहते हैं, यहाँ तक कि बहुत ही पवित्रता का झुंड होली गोस्ट कहकर नहीं बोलते हैं होली गोस्ट, क्योंकि वे खुद को पेंटिकॉस्टल के साथ पहचान देते हैं जब वे ऐसा करते हैं। वे कहते हैं होली स्पिरिट, देखो वे होली गोस्ट कहने से हटते हैं, क्योंकि पेंटिकॉस्टल वे आम लोग बस इसे वही कहते हैं जो बाइबल कहती है होली गोस्ट, जबकि होली गोस्ट और होली स्पिरिट एक ही बात है। लेकिन वे इसके बारे में बहुत सावधान रहते हैं, वे उनके साथ अन्य भाषा बोलने वाले लोगों की पहचान नहीं देना चाहते हैं, और यही पवित्र आत्मा स्वयं है। देखा, तब क्या हुआ जब वो शत्रु जो पवित्रीकरण के नीचे से चला गया, जिसे साफ किया गया था, वो वापस लौटा और पाया कि घर पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है। अब कलीसिया की स्थिति ऐसी है कि वे कलीसियाओं के संगठन के साथ विश्व परिषद के साथ जुड़ गई है, और अब यह एक स्थिति में है जो इसे रोमन कैथोलिज्म और बाकी सभी के साथ जोड़ता है, और अब यह उससे भी 7 गुना और भी बदतर है जब ये लूथरनवाद से बाहर निकले थे। यही है जहाँ मनुष्य इसे ले लेता है। और फिर लौदिकिया कलीसिया काल की ओर देखें, पवित्र आत्मा को पाने के बाद और इसके बीच में परमेश्वर की आत्मा और ज्ञान के साथ थे, और उसके बाद इसके द्वारा परमेश्वर के कामों को इंकार किया गया और इसे एक दुष्ट काम कहने लगे। फिर इसके बारे में क्या? यही है जहाँ मसीह को अपनी स्वयं की कलीसिया से बाहर रखा गया। देखा, इसने कभी भी उसे कलीसिया में तब तक नहीं दिखाया जब तक ये लौदिकिया के लिए नहीं आ जाता, और जब वह लौदिकिया पहुँचा तो उसे अपनी ही कलीसिया से बाहर रखा गया था, वापस लौटने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, धर्मीकरण ने उसे कभी भी अंदर नहीं रखा, पवित्रीकरण ने केवल उसके लिए स्थान को साफ किया, लेकिन जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आ जाता है तो उसने उसे लोगों में रखा, और अब उन्होंने उसे बाहर कर दिया जब उसने खुद को दिखाना आरंभ किया कि वो कल, आज और युगानुयुग के लिए एक है। उन्होंने उसे बाहर कर दिया क्योंकि वे संप्रदाय हो गए हैं, और वो प्रभु का आत्मा उनके संप्रदाय से सहमत नहीं होता है। अब क्या आपने समझा कि उन्होंने उसे बाहर रखा? हम इस दुरानुभूति टेलीपैथी के साथ कुछ लेना देना नहीं रखना चाहते। यह तो एक शैतान है, यह ज्योतिष विद्या है, या देखा वे नहीं सहमत होते हैं। आंखें हैं और नहीं देख सकते हैं, कान हैं और सुन नहीं सकते, समझे? परमेश्वर केवल उनकी आंखें खोलता है जिसे वह चाहेगा। वह कठोर होता है जिसे वो कठोर करता है, जिसे वो चाहता है, और उन लोगों को जीवन देता है जिसे वो चाहता है। यही है जो वचन ने कहा। अब हम इस समय को देखते हैं कि जिसमें हम हैं, इस पड़ाव में, और हम देखते हैं कि ये क्या था, और पवित्र आत्मा उस युग को फटकार दे रहा है जिसने उसे बाहर रखा है। लेकिन उस सब में क्या आपने ध्यान दिया, वो जो जय को पाता है, यहाँ तक कि उस सांसारिक दुष्ट कलीसिया के युग में वो जो जय को पाता है, हम यहाँ पर पाते हैं कि परमेश्वर के पास हमेशा ही जय पाने वाले लोग थे, उसके पास हर एक युग में जय पाने वाले लोग थे, वहाँ हमेशा ही हर समय हर युग में धरती पर ये रहते आए हैं। परमेश्वर के पास हमेशा ही कोई तो था एक धरती पर गवाह के रूप में जिसे वो अपने हाथ पर रख सकता है, वो कभी भी गवाह के बिना नहीं रहा है। हालांकि कभी कभी एक ही केवल होता है, लेकिन अब किसी को तो जय पाना है पुराने समय के संतों की तरह। और एक बहुत ही भला मनुष्य, एक विद्वान कह रहा था, 7 मोहरों के बाद उसने कहा, भाई ब्रैनम, आप एक टाइपिस्ट, मेरा मतलब चिन्हों को अध्ययन करने वाले या अनुवादक हैं, टाइपोलॉजिस्ट। उसने कहा, आप संसार में कलीसिया को एक रूप से कैसे रैप्चर में रखने जा रहे हैं बिना महासंकट के समय के? उसने कहा, आप देखें, यदि यह एक नमूना है तो वहाँ होना चाहिए, वहाँ यदि वह विरोधी है तो इसका एक नमूना होना है, उस विरोध को वहाँ से आने के लिए एक नमूना होना चाहिए। और जो कुछ भी मैं कहता हूँ यह सच है, एक नमूना है, इसका एक नमूना है, आपके पास एक छाया है। और बाइबल ने कहा पुरानी चीजें आने वाली नई चीजों की छाया थी। उसने कहा, लेकिन अब आप पुराने नियम को एक छाया के रूप में लेते हैं। अब उसने कहा, आप इस कलीसिया के साथ क्या करने जा रहे हैं? यह मनुष्य आता है, एक बड़ा मनुष्य, एक बड़ा शिक्षक, जो मेरा एक जिगरी मित्र है, जो बहुत ही भला मनुष्य है, और वो एक प्यारा भाई है। मैं भाई के विरोध में एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं करूंगा, कुछ भी हो मैं नहीं करूंगा। एक तरह से एक मसीह की नाई, मैं इसके विरोध में कुछ भी नहीं कहूंगा। वो उस विषय पर मुझसे सहमत नहीं है, लेकिन वो मेरा बहुमूल्य भाई है। हम एक साथ भोजन करते हैं और ओह, वो बस एक आकर्षण व्यक्ति है। मैं उसकी पत्रिका को लेता हूँ, इसके लेख को पढ़ता हूँ और वो मेरी कुछ बातों को लिखता है और इत्यादि, और मैंने उसके लेखों में से बहुत कुछ लिया है जो मैंने उसके लेखों में पढ़ा है, उसे कहते सुना है। वो एक अच्छा मनुष्य है, लेकिन वो बस मुझसे सहमत नहीं हो सकता है। मैं उसकी ईमानदारी की सराहना करता हूँ, हालांकि वो बस इन बातों को आसानी से नहीं लेता है कि बस उसे सहमत हो जाए जो कुछ भी आप कहते हैं। उसके पास अपना दृढ़ विश्वास है और वह इसके लिए खड़ा है। मैं इसकी सराहना करता हूँ और वो एक भला मनुष्य है। ओह, मैं शिक्षक या विद्वान नहीं हूँ, लेकिन ये व्यक्ति शिक्षक और विद्वान दोनों है। लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हो सकता क्योंकि मैं इसे नहीं देखता, लेकिन यह उद्धार से संबंधित नहीं है, यह प्रभु के आगमन से संबंधित है। वो देखता है कि कलीसिया को शुद्धिकरण के लिए महासंकट के काल से होकर जाना है। मैं कहता हूँ यीशु के लहू ने कलीसिया को शुद्ध किया है, समझे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं विश्वास करता हूँ कि जो कलीसिया महासंकट काल से होकर जाती है वो संप्रदाय कलीसिया है, लेकिन दुल्हन नहीं जाती है। क्या आप एक ऐसी स्त्री को चुनेंगे, इससे पहले आप उसे विवाह करें आपको पहले शुद्ध होना था। देखा, मसीह की दुल्हन चुनी हुई है और वो निर्वाचित है और वह परमेश्वर की दुल्हन है, यीशु मसीह की दुल्हन। और अब उसने कहा, आप उसे कैसे नमूना देंगे यदि वो दुल्हन आगे जाती है, ऊपर जाती है, इससे पहले कि महासंकट के काल से होकर जाए। कहा, मेरे पास वचन है जो आपको दिखाता है कि कलीसिया महासंकट काल में है। मैंने कहा, तब छठवीं मोहर को पढ़ें, बस इतना ही, वो ठीक वहाँ महासंकट के काल के नीचे है। लेकिन देखें, ठीक इससे पहले दुल्हन चली गई है। देखा, वो उस समय पर महिमा में होती है, उसके पास शुद्धिकरण नहीं है। देखा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है और वो दोषी या न्याय में नहीं आएगा, लेकिन मृत्यु से जीवन की ओर चला गया है। मसीह ने प्रतिज्ञा दी कि हम न्याय पर खड़े भी नहीं होंगे। सो उसने उदारता से मेरी जगह को ले लिया जब तक मैं पूरी तरह से आजाद नहीं हो गया। जब मुझे क्षमा कर दिया गया तो मैं क्षमा किया गया हूँ। कैसे वो मुझे गिरवी रखने की दुकान से बाहर ले जा सकता है, उसके पास एक साफ रसीद है। यदि कैसे वो मेरा छुड़ाने वाला बन सकता है और मुझे गिरवी रखने की दुकान से ले जा सकता है, और दलाल अभी भी कहता है कि मैं उसका हूँ, मेरे पास एक लिखित रसीद है, आमीन, यीशु मसीह के लहू से लिखी गई। देखा, अब उसमें जहाँ हम आते हैं, उसने कहा, अब आप उसे कैसे पाएंगे, चुनी हुई दुल्हन को अलग करेंगे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आप इसे कैसे एक नमूने के तहत रखने जा रहे हैं। मैंने कहा, बहुत अच्छा। मैंने कहा, यहाँ है ये। अब मत्ती 27वें अध्याय और 51 पद में यदि हम, मैं इसे पढ़ता हूँ और तब हमें यही पता चल जाएगा, तब हम देखते हैं कि यह नमूना था या नहीं, या यह चुनी हुई दुल्हन है। मत्ती 27वां अध्याय और 51 पद तो ठीक है, हम इसे पढ़ते हैं, हमारे प्रभु के क्रूस पर चढ़ाए जाने पर, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो भाग हो गया। अब वो नियम था, वो नियम वहाँ समाप्त हो गया, क्योंकि पर्दे ने परमेश्वर के पवित्र चीजों से सभा के लोगों को अलग रखा था। केवल एक अभिषिक्त याजक वहाँ अंदर चला जाता और यह वर्ष में एक बार होता था, क्या याद है। अब परमेश्वर अपने खुद के हाथ से, ध्यान दे, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक नहीं, यह कुछ 40 फुट ऊंचा था। ध्यान दे, नीचे से ऊपर तक नहीं, लेकिन ऊपर से नीचे तक, यह दिखाता है यह परमेश्वर के द्वारा किया गया है। पर्दे को दो भाग में चीर दिया, फिर यदि कोई भी जो भी चाहे आ सकता है और उसकी पवित्रता का भागीदार हो सकता है, समझे, तो ठीक है। ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़ा हो गया और धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथे जी उठी, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यह वो चुनी गई है, वो दुल्हन ना ही उस समय पर वो सारी यहूदी कलीसिया ऊपर आती है। उन सभी ने एक समान बलिदान को चढ़ाया, वे सभी मेमने के बाए हुए लहू के नीचे थे, लेकिन एक चुना हुआ झुंड था। और वो चुना हुआ झुंड, जैसे ही वो घटना घटित होती है, जिन्होंने वास्तव में सच्चाई से इसका विश्वास किया था, अब मैं इस शब्द पर आ रहा हूँ, जय पाना, अब पकड़े रहना। ये जिन्होंने वास्तव में जय पाई थी, सच्चाई से उसी भेंट को चढ़ाते थे जो बाकी के लोग चढ़ाते थे, लेकिन सच्चाई से संसार की चीजों पर जय पाई थी। जब उनके लिए संतुष्टि की भेंट सही रीति से तैयार की गई थी, वे स्वर्ग में थे, तब तक के लिए जब तक उस समय में इसे नहीं दिखाया जाता है। जब वो समय तैयार किया गया, उन्होंने जय पाई थी और विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, देखो बहुत से लोगों के शरीर उस मिट्टी में सोए हुए हैं, देखो सोए हुए। अब यदि हमारे पास समय होता था तो हम दानियल के पास वापस जा सकते थे, जब दानियल जो कि चुना हुआ था उसने जय पाई थी और उसने कहा, दानियल पुस्तक को बंद करो क्योंकि तुम अपने बड़े झुंड में विश्राम को पाओगे। लेकिन जब राजकुमार आएगा जो लोगों के लिए खड़ा होगा तो तुम उस बड़े झुंड में खड़े रहोगे। यहाँ है ये दानियल, परमेश्वर के इस भविष्यवक्ता ने अंत के समय को आते हुए देखा और उसने कहा, दानियल तुम उस दिन पर बड़े झुंड में खड़े रहोगे। और यहाँ वो था ऊपर आते हुए, सारे इजरायली नहीं लेकिन इजरायल के दुल्हन का नमूना। अब बाकी का इजरायल ऊपर नहीं आता है जब तक सार्वजनिक पुनरुत्थान नहीं होता है। और अब प्रभु यीशु के आगमन पर, जो वास्तव में उनके आगमन से प्रेम रखते हैं, वो इसके लिए जी रहे हैं। जब वो आकाश में उपस्थित होता है तो कलीसिया जो मसीह में मरी है जिलाई जाएगी और वे पल भर में बदल जाएंगे। उनमें से बाकी के इसके बारे में कुछ भी नहीं जानेंगे। याद रखें, शहर में उन लोगों को दिखाई दिए, देखा वो रैप्चर इस तरह से होगा, हम एक दूसरे को देखेंगे और हम उन्हें देखेंगे, बाकी का संसार उन्हें नहीं देखेगा, वे दूर उठा लिए जाएंगे, जैसे एक गुप्त में हो रहा होगा। उस समय के लिए रुके हैं, उसके बाद उस महिमा में 6 शताब्दी के लिए धरती पर लौट आएंगे, फिर हजारों वर्ष, बाकी के मृत 1000 वर्षों तक नहीं रहेंगे, और फिर सार्वजनिक पुनरुत्थान आता है जहां सभी इजरायली ऊपर आ जाते हैं। और वहां देखो 12 पीड़ित 12 आदरणीय प्रधान सारे प्रतिनिधित्व करते हैं और हम अभी तक कभी भी वहां नहीं पहुंचे हैं। हो सकता है परमेश्वर ने चाहा तो हम इस नए नियम में पाएंगे कि कैसे यशब पत्थर की दीवारें और 12 पत्थर 12 फाटक 12 नींव इसका प्रतिनिधित्व किया गया है। यहाँ पर वे 12 सिंहासन पर हैं, उनके समय के संदेशवाहक दूत उन लोगों पर न्याय करने के लिए जिन्होंने उनके संदेश को ठुकरा दिया था। आमीन। वहाँ पर वो महान घड़ी ऊपर आती है। जी हाँ, क्या ही दिन है, क्या ही समय है जिसमें हम जी रहे हैं। हमें किस तरह से इसकी जांच करनी चाहिए कलीसिया। अब हम इन आने वाले बातों के बारे में बात करते हैं जो होने वाली है। अब आज आइए यहाँ वापस आते हैं और देखते हैं, खुद को जांच कर और देखें कि हम विश्वास में सही हैं या नहीं हैं। अब आइए कुछ समय के लिए कुछ जय पाए हुए लोगों के लिए बात करें, नूह के समय के दिनों में, जिसे यीशु मसीह के द्वारा आज के जैसे होने का नमूना बताया। मुझे लगता है कि 10 मिनट हैं, अब मैं आधे घंटे का समय लूंगा। मैं अपना पहला पन्ना अभी आरंभ कर रहा हूं। मैं उनमें से कुछ बातों को छोड़ दूंगा यदि मैं कर सकता हूं तो, और लूंगा जो नूह के समय में जो आज का नमूना है, यीशु ने उसका उल्लेख किया और कहा, जैसा कि यह नूह के समय में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने पर भी होगा। नूह के समय में वैसा ही यह मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। ध्यान दें, वहाँ सारे पुराने रूढ़िवादी लोगों का संसार था, संभवत है लाखों लोग थे, वहाँ 8 जय पाने वाले थे, 8 लोग जय पाने वाले हुए जो सच्चे असली जय पाने वाले थे। नूह के 3 पुत्र और उनकी पत्नियाँ और नूह और उसकी पत्नी थे 8 जय पाने वाले जिन्होंने उचित समय पर जहाज में प्रवेश किया। उन्होंने इसे कैसे किया? उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना। वे दरवाजे के बाहर नहीं पाए गए थे, वे दरवाजे के अंदर पाए गए थे। ओ मेरे प्रिय मित्रों, उस दरवाजे को बंद होने न दें। यीशु ने कहा, जैसा कि ये उस दिन में था, वैसा ही ये मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। धन्यवाद भाई, वैसा ही ये मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। अब वहाँ कोई तो उस दरवाजे के बाहर पाया जाएगा। उनमें से कई लोगों के पास अच्छे इरादे हो सकते थे और कहा होगा, किसी दिन यदि ऐसी बात घटित होती है तो हम भाई नूह के साथ जाएंगे, क्योंकि वो एक अच्छा व्यक्ति है। लेकिन आप देखें, यह केवल 8 लोग ही अंदर पाए गए। अब जोर लगाकर सोचें, यदि आप ऐसे ही यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, ढीले हो रहे हैं, अंदर आ जाओ, शीघ्रता से, जल्दी करो, क्योंकि दरवाजा किसी समय बंद हो सकता है। और हमेशा ही परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में एक जहाज रहा है। नूह के दिनों में एक जहाज था उनके लोगों को बचाने के लिए। नियम के दिनों में एक संदूक था, गवाही का संदूक। नियम के दिनों में उन्होंने संदूक का अनुकरण किया। और अब वहाँ तीसरा समय काल है, नूह के समय की तरह, लूत का समय, और अब ये समय, अब एक संदूक है। और वह संदूक एक संप्रदाय नहीं है, ना ही एक अच्छे काम है जो आप करते हैं। ये एक आत्मा के द्वारा है। रोमियो 8:1, हम सभी ने एक देह में बपतिस्मा लिया है, उस राज्य के अधिकार में, एक आत्मिक बपतिस्मा। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना अच्छा है, कितना बुरा है, जो भी हो, आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा उस राज्य में हैं। देखा, इसी एकमात्र तरीके से आप जय पाते हैं। यह सब कुछ बाहे हुए लहू के नीचे जय पाते हैं, क्योंकि आप खुद से जय नहीं पा सकते हैं। ये वो है जो आपके लिए जय पाता है। आप विश्राम कर रहे होते हैं। फिर मैं कैसे जानूंगा भाई ब्रैनम कि मैं उसमें हूँ? देखो कि आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं। एक बार यहाँ वहाँ देख लें, देखें क्या यह अपने आप से आप में से बाहर आता है, या क्या आपको तनाव होता है और खींचना पड़ता है। देखो, तब इसे आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने की कोशिश मत करो। क्या आपने कभी कोशिश की? जी हाँ, मत करो। ये बस एक आस्तीन के छेद में छोटे बच्चे के हाथ डालने की तरह है। आप देखें, वह बस ऊपर नीचे, उसके ऊपर, और वो बस सब कुछ करता है, समझे? वह इसे नहीं कर सकता है। प्रिय, अपने कोट को पहन लो। वह इसे नहीं कर सकता है। छोटे छोटे हाथ ऊपर नीचे यहाँ वहाँ जाएंगे, यह आपके संतुलित हाथ को लेता है। ओह, मैं कितना खुश हूँ, मैं बस पिता को अपना हाथ सौंप सकता हूँ, कहते हुए, हे प्रभु यीशु, मैं वहाँ हाथ को नहीं डाल सकता हूँ, आप मेरी सहायता करें, मुझे कोट पहनाए, मैंने कोशिश करना छोड़ दिया है, केवल उसे इसे करने दें। समझे, यदि वो छोटा बच्चा कोशिश करता रहता है, ओह मैं इसे कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और वह बस हर कहीं हाथ डालता रहेगा, वह इसे नहीं कर सकता, ना ही आप कर सकते हैं, ना ही मैं कर सकता हूँ। लेकिन यदि हम शांत खड़े रहें और उसे इसे करने दें, केवल उसे सौंप दें, यहाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ, बस मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सौंपता हूँ, आप मेरे हाथ को सही जगह पर डालें, यही जीत है, यही जय पाना है। जिस चीज पर आपको जय पाना है, वह आप स्वयं है, आपके विचार, आपकी बातें, और अपने आप को उसे समर्पित करना है। उसने तुम्हारे लिए जय को पाया है, वह मार्ग को जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन नूह के समय में वहाँ 8 जय पाने वाले थे, और यही है जो अंदर पाए गए थे, वे अंदर पाए गए। अब देखो मित्रों, मैं सोचता हूँ वे इसे टेप कर रहे हैं, क्या यह टेलीविजन पर होगा? और नहीं, मुझे क्षमा करना, टेप में होगा। जो भी आप करते हैं, वे जो अब सुन रहे हैं, और वे जो बाद में सुनेंगे, देर हो चुकी है। आपके पास अच्छा उद्देश्य होगा, लेकिन अंदर पाया जाना है। अब संघर्ष न करें, ना ही जो चाहता है या जो दौड़ता है, लेकिन परमेश्वर जिसे चाहे, बस परमेश्वर को करने दें, केवल अपने आप को उसे सौंप दें, और आगे चलते रहें, एक सिद्ध संतुष्ट विश्वास के साथ कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, वो उसे पूरा करने में सक्षम है। ना ही एक संस्था से जुड़ना, दूसरी संस्था से, इधर दौड़ना, उधर, और हर कहीं और इसे परखना, केवल परमेश्वर को खुद को सौंप दें और उसके साथ चलें, शांतिपूर्वक, चुपचाप, बिना रुकावट किए, बस उसके साथ चलते रहें। यह सही बात है। यही है जो मैंने हमारे भाई को बताया, जो तब टूटकर रो पड़ा था। समझे, केवल उसे सौंप दो, वो यहाँ पर है। वो ही है जो जानता है कि आपने क्या किया है और आपके ऐसा होने का कारण और इस तरह से करने का क्या कारण है। वो सब, वो आपके बारे में सब जानता है और उसने आपको अभी पीछे बताया है कि क्या करना है। अभी मैंने कहा केवल एक ही बात है जो तुम्हें करना है, बस जाकर इसे करें। ऐसा है, अपने सारे अतीत को भूल जाएं, चलिए भविष्य के लिए जिएं, महिमा और प्रभु की उपस्थिति में। 8 जय पाए हुए लोग। उस दिन दानियल के समय में वहाँ 4 जय पाए हुए लोग थे जो आग और सिंह की परीक्षा में खड़े हो सके थे। अब हम परीक्षा के होने की अपेक्षा में हैं। यह मेरे भाई के लिए भी वहाँ पीछे एक अच्छा सबक है। वह जो परमेश्वर के पास आता है उसकी पहले परीक्षा होनी ही है। परीक्षा होना किससे? वचन से। यही परमेश्वर का परीक्षा है। क्या आप इसे विश्वास करते हो? वह जो परमेश्वर के पास आता है उसकी पहले परीक्षा होनी ही है। तब यही केवल एक सच्ची संतान को दिखाता है। परीक्षा होना है, और जब परीक्षा आती है आप जय नहीं पा सकते हैं जब तक आपको एक परीक्षा न दी जाए, और जब परीक्षा दी जाती है तो यह देखना है कि आप जय पा सकते हैं या नहीं। और यीशु ने कहा जो जय पाता है उस परीक्षा में, वो परीक्षा ही सबसे बड़ी बात है जो कभी आपके साथ होती है। मैं सोचता हूँ कि ये वचन में लिखा गया है, पत्रस ने कहा हमारी परीक्षा बहुमूल्य सोने की तुलना में हमारे लिए अधिक मूल्यवान है। यह एक परीक्षा का समय है। ये हमारे लिए एक अच्छा प्रमाण है कि जब हमारी परीक्षा होती है तो परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर की सारी संतान की परीक्षा होनी है और परखा जाना है। और दानियल एक मनुष्य, एक भविष्यवक्ता, शर्दक, मेशक और अबेदनगो, दानियल भविष्यवक्ता था और यही उस दिन की कलीसिया का आकार था। मेरा मतलब है दुल्हन। वहाँ बहुत सी कलीसियाएं थी, उनमें से 20 लाख वहाँ निकल गए, लेकिन वहाँ यही वो जय पाने वालों का आकार था। और उन जय पाने वालों को परीक्षा में डाला गया है, और हर जय पाने वालों को परीक्षा में डाल दिया जाना चाहिए। और जब उन्होंने कहा तुम उस बात को वापस लो जो वचन कहता है, या तो आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा, उन्होंने सब कुछ इनकार कर दिया पर वचन को नहीं। और जब दानियल को परीक्षा दी गई तो उसे वापस लेना चाहिए जो वचन ने कहा था कि उन्हें मंदिर की तरफ झुकना चाहिए, जैसे सुलेमान ने प्रार्थना की, और वो उन्हें सारी बातों से छुड़ाएगा, परमेश्वर स्वर्ग से सुनेगा यदि वे झुके तो मंदिर की ओर देखकर और प्रार्थना करें। और कहा यदि कोई व्यक्ति इन दिनों के भीतर प्रार्थना करता है, और हम मांदी फारिसिया हैं जो हमारे नियमों को अदल बदल नहीं सकते हैं, उस मनुष्य को शेर के गुफा में फेंक दिया जाएगा। उन्होंने उसके लिए एक जाल को बिछाया। मैं विश्वास करता हूँ कि भविष्यवक्ता को ये पता चल गया था, लेकिन उन्होंने उसके लिए एक जाल तैयार किया। वह नम्रता से चला था। जब उसके प्रार्थना करने का समय आता है, जब वो जानता था जो उसका घर का स्थान है यरूशलेम में, वहाँ वेदी पर जलता हुआ बलिदान था। दानियल उन भेदियों से नहीं डरता था। पर्दों को ऊपर उठाया और किवाड़ को पीछे फेंक दिया, और नीचे घुटनों को टेक कर परमेश्वर की ओर हाथों को उठाया और प्रार्थना की। क्यों? जीना या मरना, उसके पास जीत थी। और सो इतनी ज्यादा विजय, इतना तक कि शेर भी उसे नहीं खा सके, उसने जय पाई। वो शर्दक, मेशक, अबेदनगो के पास इतनी बड़ी जीत थी, शेर तक, इतना तक आग भी उन्हें जला नहीं सकी। आप जानते हैं जीत एक मुश्किल बात है, जल जाने के लिए या खा जाना या जो कुछ भी है। देखा तो उनके पास जय थी। मैं एक और चरित्र का उल्लेख कर सकता हूँ। लूत के दिनों में यीशु ने इसका उल्लेख किया। वहाँ केवल 3 ही थे जिन्होंने जय पाई, लूत और उसकी 2 पुत्रियाँ। उसकी पत्नी भी नहीं, उसने जय नहीं पाई। उसने आरंभ किया था, वो एक नमूना है। काश हमारे पास समय होता था। ठीक अभी मैंने 30 मिनट पूरे कर लिए हैं। देखा उसने सब ठीक किया, वो निकल गई। अब मुझे ये आपको बताना है, एक क्षण रुकना। आप में से बहुतों ने भी छोड़ दिया है, आप में से बहुतों ने इन चीजों को छोड़ दिया अपने स्थान को लेने के लिए। वचन के जरिए से इसे जांचने के बाद और देखा कि यह सही है। आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रमाणित होने को देखा, न किसी के द्वारा या जो किसी ने बताया कि एक प्रमाणित था। बाइबल जो कहती है वो होगा, और यहाँ ये से कर रहा है। आपने इसे देखा, यह सच था। तो आप बाहर निकल आए हैं, सदम को छोड़ने के लिए, संप्रदाय को छोड़ने के लिए, उन चीजों को छोड़ने के लिए जो आपको एक सिद्धांत से बांधते हैं, और मसीह के पीछे चलना पवित्र आत्मा के द्वारा खुद को परमेश्वर के लिखित वचन से प्रमाणित करते हुए। दूसरे शब्दों में, आपने सिद्धांत के बजाय बाइबल को लिया है, आप बाहर निकले ताकि इसका अनुकरण करें। सो लूत की पत्नी ने उसी काम को किया। आप जानते हैं, वह लूत के साथ जाने के लिए बाहर निकली, अपने पति के साथ, उसके बच्चों, उसके प्रियजनों के पीछे चलने लगी, लेकिन ये उसके हृदय में नहीं था। वो अभी भी संसार से प्रेम करती थी। इसलिए ये संभव है कि आप एक आरंभ कर सकते हैं और फिर भी आप में संसार हो सकता है। देखा, उसने कभी भी जय नहीं पाई थी, और यहाँ तक वह मार्ग पर भले ही अच्छी तरह से थी, इसने अतः उसे पराजित कर दिया। उसे उस एक बड़े लंबे समय तक आखिरी निगाह को डालना था। यही है जहाँ पर वो रुक गई। यहाँ तक पीछे भी मत देखो, कोई इच्छा न रखें, आगे चलते रहें, कलवरी पर अपना ध्यान रखें और मसीह की ओर बढ़ते रहें। समझे, उसने एक जय पाने वाले के रूप में आरंभ किया, लेकिन उसने कभी भी जय नहीं पाई, और उसने संप्रदाय को छोड़ दिया। उसने छोड़ा, वह लूत के साथ सदम से बाहर निकल कर आई, लेकिन वो वापस जाकर अपने बाल को कटवाना चाहती थी। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, समझे। उसे वापस जाना पड़ा, वह परीक्षा में स्थिर नहीं खड़ी हो सकी। उसे मुड़कर फिर से देखना था, यह देखने के लिए कि उनमें से बाकी लोग क्या कर रहे थे। ओह, आप जानते हैं, आखिरकार मेरे यहाँ कुछ अच्छे मित्र हैं, और आखिरकार ये कुछ ही कदम चल सकते हैं। मैं नहीं जानता यह सही हो सकता है या नहीं, मुझे इसके लिए मेरे पास केवल इस मनुष्य के शब्द हैं। हालांकि वो मेरे पति हैं, लेकिन फिर भी आपका पास्टर आपका पति है, आत्मिक रूप से बोल रहा हूँ। आप देखें, अब चाहे यह सही हो सकता है या नहीं, मैं नहीं जानती, हो सकता है वो उसका प्रकाशन सही नहीं था। फिर यदि आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप पूरी तरह से नहीं जानते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है, तब आप नहीं जा सकते हैं। देखा, आपको वास्तव में सब कुछ दे देना चाहिए, आपको जानना चाहिए। केवल इतना ही मत कहें, तो मैं दूसरों को इसे करते हुए देखता हूँ, मैं एक चिन्ह देखता हूँ। आप जानते हैं, इसराइल बाहर निकला, मैं उसी बात को कह सकता हूँ और इसे यहाँ ला सकता हूँ। वे बाहर निकले, 20 लाख मजबूत और दो पुरुषों के साथ समाप्त हुआ, सही है। उन्होंने परमेश्वर के काम को देखा, उन्होंने आत्मा का प्रकटीकरण देखा, उन्होंने मिस्र में महान और शक्तिशाली अद्भुत कार्यों को होते हुए वहाँ पर देखा और सब कुछ, और बाहर निकले, लेकिन ये उनके हृदय में नहीं था। उन्होंने जय को नहीं पाया, वे बाहर निकले और यीशु ने कहा वे जंगल में नाश हो गए और अनंतता के लिए मर गए। उनमें से हर एक जन मरा हुआ है, इसका अर्थ है अनंत काल का अलगाव। उनमें से हर एक जन जंगल में सड़ गया, लेकिन वहाँ दो पुरुष थे, यहोशु और कालेब, और जब ये बल परीक्षा की बात आई, वे बांधाए इतनी बड़ी थी, इतना तक कि वे उनके सामने टिड्डी की तरह लग रहे थे। यहोशु कालेब के साथ चिल्ला उठा और कहा, हम इसे करने में सक्षम हैं, क्यों? परमेश्वर ने ऐसा कहा है। और वे जय पाने वाले थे, उन्होंने जय पाई। वही वो एक थे जिन्हें सौभाग्य मिला था लोगों के उस बहुत बड़े संगठन से बाहर निकलने का, ताकि वास्तविक चुनी हुई दुल्हन को प्रतिज्ञा किए हुए देश में लेकर जाएं। यहोशू और कालेब वहाँ दो जनरलों के रूप में आगे की कतार में थे, उन्हें वहाँ सीधा नदी की ओर लेकर गए और नदी को पार किया वहाँ प्रतिज्ञा देश के अंदर, क्यों? उन्होंने वचन पर विश्वास किया, कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी हो। तब दातान उठा, मेरा मतलब दातान खड़ा हो गया, और कोरह वो भी खड़ा हो गया, और उन्होंने यह कहने की कोशिश की, यह मनुष्य हम बाकी सभी लोगों के ऊपर अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है कि वो उन सभी लोगों के मुकाबले ज्यादा पवित्र है। ऐसा परमेश्वर के द्वारा उस मनुष्य को पूरी तरह से प्रमाणित करने के बाद था। उन्होंने कहा, हम बस एक लोगों का झुंड आरंभ करेंगे, और हम ये बनाएंगे, वो या कुछ और बनाएंगे, और हम अपने संगठन बनाएंगे, हम करेंगे, और वे मर गए और नाश हो गए। लेकिन उन पुरुषों के पास परमेश्वर का वचन था, और वे इसके साथ बने रहे, और वे वहाँ चले गए। न ही वो जो आरंभ करता है, वो जो समाप्त करता है। बहुत से लोग दौड़ को आरंभ करते हैं, लेकिन एक इसे समाप्त कर रहा होता है। वहाँ बहुत सी कलीसियाएं आरंभ होंगी, बहुत से लोगों के झुंड एक झुंड समाप्त करेगा, यही जय पाने वाले हैं। लूत के दिन, जी हाँ, उसे पीछे मुड़कर बहुत दूर तक देखना था, बहुत समय तक देखती रही, ओह मैं वहाँ फलाना फलाना को पीछे छोड़ रही हूँ, हमारे पास अच्छा समय हुआ करता था, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। और वो वहीं रुक गई, बाहर अटक गई, जैसे नूह के दिनों में था, वह बाहर ही अटक गई बिना दया के, और वो नाश हो गई, और वो ढेर आज भी वहाँ खड़ा है। वे दावा करते हैं, मैं नहीं जानता, आप उसका एक टुकड़ा तोड़ सकते हैं और यह वापस बढ़ जाएगा जो एक नमक का खंभा है। आपने कभी सदोम और गमोरा की तस्वीर देखी है? आप वहाँ पर खड़े मूल नमक के खंभे को देखेंगे। अब वहाँ नमक के खंभे और आग के खंभे के बीच एक अंतर है, देखा? आपको एक ही रास्ते की तरफ मुड़ना होगा। जी हाँ, ध्यान देना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय में, वहाँ 6 पाए गए जिन्होंने जय को प्राप्त किया था। सारे युगों में उन्होंने जय पाई थी। यूहन्ना के समय में उनके पास 6 थे, जो यूसुफ और मरियम, जकरिया और एलिशिबा, शिमोन और हन्ना थे। एक पुरुष और एक स्त्री। देखें, मसीह और कलीसिया का नमूना, मसीह कलीसिया। देखा, समझे? ध्यान दें, यह स्वाभाविक मनुष्य से आरंभ होता है, नहीं, यूसुफ, स्वाभाविक मनुष्य। यूसुफ वह क्या था? एक बड़े, तब वो याजक, वह क्या था? समझे? प्रभु के भवन में एक सेवक, जकरिया, और वहाँ पर वो शिमोन के लिए एक भविष्यवक्ता और एक भविष्यवक्तनी। देखा, धर्मीकरण, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आमीन, क्या आप इसे नहीं देखते हैं? पूरी तरह से 6 जय पाने वाले, वे बाकी के सारे, उन्होंने अपने बलिदान को चढ़ाया और इत्यादि, लेकिन इन्हें चुना गया था, उन्होंने जय पाई। हर कलीसिया युग पर ध्यान दें, वही जयवंत लोग, जब वे हर युग, हर एक युग में उस युग के परीक्षाओं से जयवंत हुए। मेरे पास यहाँ वचन है, मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे पास इसे करने का वास्तव में समय है, लेकिन हम कलीसिया काल में से हर एक को जानते हैं। वैसे ही अब है, यह बस ऐसा है जैसा कोई तो। देखो, जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था, आप हारे हुए जन्मे हैं, और वो जन्म आपको कभी भी जीवन में नहीं ला सकता है, क्योंकि आप हारे हुए जन्मे हैं, और आप एक हारे हुए संसार में हैं, हारे हुए लोगों के बीच, हारी हुई संस्थाओं के बीच, हारे हुए संप्रदाय। आपको किसी तरह से जीत के लिए आना होगा। यह एक कमल की तरह है, कहाँ है? मैं सोचता हूँ कि एक कमल वहाँ सबसे सुंदर फूलों में से एक होता है। मैं उन बहुत बढ़िया कालला कमल और तालाब के कमल का बहुत ही चहेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि शायद ही कोई इतना सुंदर है जितना कि ये एक बहुत बड़े तालाब का कमल होता है। इसे जल कमल कहते हैं। क्या ही ये तेजस्वी होता है! अब यह कहाँ से आता है? यह एक छोटा सा बीज है जो एक गंदे कीचड़ के तालाब के तल में होता है, और उस वक्त उस छोटे से बीज में उस समय वो तेज होता है जब वो उस कीचड़ में होता है जो कभी चमकेगा। लेकिन इसे रोजाना प्रयास करना है, यह जानते हुए कि कुछ तो है जो काला है, जो गंदा है, यह कीचड़ से भरा है, यह चिकनी मिट्टी है, उस चिकनी मिट्टी में यह रहता है, फिर भी यह उस कीचड़ में से, गंदगी में से और पानी, मैले गंदे स्थानों में से होकर मार्ग को बनाते हुए आगे निकलता है, जब तक कि यह उस प्रकाश में अपने सिर को ऊपर नहीं लाता है और उस चीज को व्यक्त करता है जो इसमें हर समय से छिपा हुआ था। मैं सोचता हूँ कि यही एक जय पाने वाला होता है जो एक बार पाप में था, एक बार उन चीजों को किया जो गलत थी। अब इसके बारे में चिंता न करें। एक बार उन चीजों को किया जो गलत थी, तो अब उस तालाब में फिर से क्यों देखें? देखा, देखो, आपके पास परमेश्वर उसके पहले से ठहराए जाने के द्वारा, देखो, इस बीज को जीवन में लाया है, और ये अपने आप से आगे बढ़ रहा है, देखो, उस प्रकाश में आ रहा है, और अब उन सभी के ऊपर इसने जय को पाया है। देखा, ये खुद को वहाँ नीचे व्यक्त नहीं करता है, यह खुद को व्यक्त करने के लिए ऊपर आ रहा है। ना तो आपने व्यक्त किया आपके पाप में और व्यभिचार और जो कुछ भी जिसमें आप जिए थे, आपने कुछ भी व्यक्त नहीं किया, लेकिन वहाँ पर एक बीज था और इसे प्रकाश में खुद को ऊपर लाने का मौका मिला और अब आप यीशु मसीह की उपस्थिति में हैं। पुत्र के प्रकाश के साथ इसने उसे बाहर लाया, वास्तव में जो आप आरंभ में थे। आप समझे मेरा क्या मतलब है? आपने प्रकाश को देखा, आप खिल उठे, आपने अपना हृदय खुला रखा और अब आप एक कमल हो। आपको कमल पर मेरा उपदेश याद है? आदरणीय कमल, वो कैसे कठिन परिश्रम करता है और फिर भी वो झुकाव नहीं लाता है, और फिर भी सुलेमान उसकी सारी महिमा में इसमें से किसी एक की तरह नहीं था। वो उसकी ओर देखो, वह तैयार है, वह खुद से कुछ भी नहीं लेता है। वो कमल खुद के बारे में कुछ भी परवाह नहीं है। वो क्या करता है? वो अपनी सुंदरता को बाहर लाता है, उसका जीवन जिससे दूसरे देख सकते हैं। उसका जीवन व्यक्त होता है जिससे कि दूसरे महिमा को देख सके जो उसमें उस कीचड़ में था। अब वह सबसे ऊपर है, यही वो जय पाने वाला है। उसने कीचड़ पर जय पाई, उसने संसार की चीजों पर जय पाई और अब वो स्वतंत्र रूप से खुद को बाहर लाता है। हर कोई उसे देख सकता है, उसका जीवन, आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। देखा, वो एक सच्चा जय पाने वाला है। अब आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। कहा, वो कीचड़ से बाहर आया है, लेकिन वो अब कीचड़ में नहीं है, वह इसके ऊपर है। आमीन। अब आप उसकी ओर उंगली नहीं उठा सकते हैं। जो वो था, वो अब क्या है? वो ऊपर है। तब वो मधुमक्खी आती है और कहती है, यह अद्भुत खुशबू है, मैं सोचती हूँ कि मैं जाकर और अपने हिस्से को प्राप्त करूंगी। वो बस अपने हृदय को खोलता है। अब आगे बढ़ो, ठीक है, सब कुछ उसमें से बाहर आता है। देखा, वो एक सच्चा पास्टर है, वह परमेश्वर की महिमा को व्यक्त करता है। और देखो, वो कहाँ से आया है? उसे यह करने के लिए जय पाना था। एक समय वो पुरुष या वो स्त्री युवा थे और सुंदर और रूपवान थे। उनके पास उनमें से होकर जाने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं थी, लेकिन उन्होंने उस पर जय पाई थी। देखा, उन्होंने जय पाई। अब वे अपने जीवन में मसीह की सच्ची सुंदरता को व्यक्त कर रहे हैं। ध्यान दे, कीचड़ में से होते हुए व्यक्त करना। यीशु ने हमें उदाहरण दिया इसे कैसे करना है। अब हम जानना चाहते हैं कि कैसे जय पाना है। यीशु ने हमें बताया कि इसे कैसे करें। देखा, नम्रता से खुद को एक तौलिया बांधकर और चेलों के पैरों को धोकर और उन्हें पोछा। उसी स्वर्ग के परमेश्वर ने खुद को नम्र किया। हम नम्र नहीं होना चाहते हैं। यही कारण है कि स्त्रियां नहीं चाहती हैं कि उनके बाल बढ़ जाएं। देखा, यही कारण है स्त्रियों की तरह कपड़े पहनना नहीं चाहती हैं जैसे उन्हें कपड़े पहनना चाहिए, जैसे पुरुष नहीं चाहते हैं। देखो, ये वही बात है, वे नहीं करते, वे उन्हें नम्र होना है। लेकिन यीशु हमेशा ही, देखो वो कौन था, महानता। मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, नम्रता अपने आप में सबसे महान होती है। महान खुद को नम्र करता है। महानता, मुझे कुछ बड़े पुरुषों से मिलने का सौभाग्य मिला था और ये वे लोग थे जिनके पास बदले हुए कपड़े होते हैं और उनके जेब में 50 सेंट होते हैं और बकवास करने के लिए। यही वो व्यक्ति है जो सोचता है कि वह कुछ तो है जबकि वो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं उस बड़े व्यक्ति के पास खड़ा था, मेरा मतलब है वो बड़ा व्यक्ति उस फटी हुई आस्तीन और आस्तीन की कलाई फटी हुई उस महान पुरुष के साथ। वे आपको सोचने को लगाएंगे कि आप महान व्यक्ति हैं। देखा, महानता ही नम्रता है। कलीसिया, यह मत भूलना, महानता नम्रता में व्यक्त हुई है। ना ही आप कितने अच्छे हो सकते हैं। अब मेरा मतलब गंदा नहीं है, मेरा मतलब आत्मा में नम्रता है। देखा, मेरा मतलब यह नहीं है कि बाहर जाकर ना कभी धोएं और साफ करें, यह आपको इसे करना चाहिए, आप ये जानते हैं। देखा, लेकिन मैं नम्रता, वास्तविक नम्रता के बारे में बात कर रहा हूँ, ना ही दिखावा। कुछ तो ऐसा जो सच्ची नम्रता है। यीशु ने हमें बताया कि यह कैसे करें। उसने जय पाई, मतलब जय पाने का मतलब परीक्षा के लिए खड़ा होना। यह सही है, जैसा कि सारे पुराने संतों ने किया था, जैसे यीशु ने किया। उसके सारे शत्रुओं के बीच वह परीक्षा में खड़ा था। हर एक चीज जो उसके विरोध में परीक्षा आई, वह खड़ा हुआ था उसी बीमारी के सामने, और वह मसीहा होने के कारण उसने उन्हें चंगा किया। मृत्यु के सामने उसने इसे वापस जीवन में लाया। कलवरी के सामने उसकी अपनी मृत्यु को उसने स्वयं को समर्पण करने के द्वारा इसे हरा दिया। क्यों? वचन के द्वारा। कहा, तुम इस मंदिर को गिरा दो और मैं इसे 3 दिनों में खड़ा करूंगा। वचन ऐसा कहता है, देखा, और मृत्यु का सामना करने में उसने इसे हरा दिया, उसने मृत्यु पर जय पाई। अधोलोक का सामना करने में उसने अधोलोक को हरा दिया और अधोलोक पर जय पाई। जी हाँ, कब्र का सामना करने में उसने कब्र पर जय पाई। क्यों? सब कुछ वचन और नम्रता के द्वारा। ओ प्रभु, वहाँ वो सच्चा मनुष्य है, वहाँ वो एक मनुष्य जो आपके लिए उदाहरण बनता है। देखा, उसने हर एक चीज को हरा दिया, इस पर जय पाई। देखो, परीक्षाएं उसके लिए थी। क्या आप ये जानते हैं? बाइबल ने कहा उसकी हमारे जैसे हर एक स्तर से परीक्षा हुई थी, फिर भी बिना पाप के था। उसकी शराब के द्वारा परीक्षा हुई, उसकी स्त्रियों के द्वारा परीक्षा हुई थी, उसकी उस हर एक चीज के द्वारा परीक्षा हुई थी जिसके द्वारा परीक्षा हो सकती है। उसकी हर एक चीज के द्वारा परीक्षा हुई जो हमारी होती है। वो एक मनुष्य था और फिर भी आप उस पर दाग नहीं लगा सकते। जी हाँ श्रीमान, जय पाने का मतलब है शैतान को उसकी हर एक चाल में पहचान लेना। बहुत से लोग कहते हैं कोई शैतान नहीं होता है, यह तो केवल एक विचार है, आप उस पर विश्वास मत करना। एक वास्तविक शैतान है, वो उतना ही वास्तविक है जितना आप हैं या कोई भी। एक वास्तविक शैतान, और आपको उस वास्तविक को पहचानना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि वो एक शैतान है। तब उसी समय जब आप उसे पहचानते हैं और जानते हैं कि वो एक शैतान है और वो आपके खिलाफ है, तब जय पाने के लिए आपको पहचानना चाहिए कि आप में जो परमेश्वर है उस शैतान से बढ़कर है और वो सबसे बड़ा और सामर्थी है। वही वो एक है जो आप में पहले से ही उस पर जय पा चुका है और उसके अनुग्रह के द्वारा आप उसकी तुलना में कुछ अधिक मेल खाते हैं। आमीन। जब आप पहचान जाते हैं तो वास्तविक जय पाना होता है। आप पीछे देखते हैं, कहते हैं मैं यह कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, तब नहीं, आप हार गए हैं। लेकिन जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, जो शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं, तब आप जान जाते हैं कि आपने जय को पाया है और आप जानते हैं कि वो एक शैतान है। आप नहीं कह सकते मुझे एक बीमारी है और मैं विश्वास नहीं करता कि ये एक बीमारी है। ओ हाँ, यह एक बीमारी है। आपको कैंसर है, आप विश्वास नहीं करते कि ये एक कैंसर है, यह एक कैंसर है, यह एक कैंसर है। लेकिन याद रखें, वह बढ़कर है जो तुम में है, उससे जो इस संसार में है। आपको यह जानना होगा कि पवित्र आत्मा जो आप में है उसने पहले से ही इस चीज पर जय पा चुका है और वो तुम में है और आप उसके द्वारा जय पा सकते हैं। बिल्कुल यही समझदारी है, यह बिल्कुल इसी तरह से वचन में लिखा गया है। जय पाना मुझे जल्दी करना होगा, मैंने अब 45 मिनट ले लिए हैं, मैं अब वास्तव में समय से ज्यादा ले रहा हूँ। ध्यान दें, जय पाना वह परमेश्वर जो आप में है वो उस एक से बढ़कर है जो उसमें है। संसार का परमेश्वर स्वर्ग के परमेश्वर जितना बड़ा नहीं है जो तुम में है। कोई भी और अंधकार उजाले की उपस्थिति में और खड़ा नहीं हो सकता है। अब अंधकार उजाले की उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकता है। मैं परवाह नहीं करता यह कितना अंधेरा है, प्रकाश इसे बाहर कर देगा, यह खड़ा नहीं हो सकता है। महिमा। लेकिन आप जितना अंधकार लेना चाहते हैं ले लें और एक बार उजाले के विरोध में खड़े होने की कोशिश करें, देखें कि क्या होता है। यही वो एक है जो आप में है, वो उजाला है, और वो जो संसार में है वो अंधकार है। सो उजाला अंधकार पर जय पाने पर साबित हुआ है, और वो व्यक्ति जो मसीह में है और जानता है कि उसने संसार की चीजों पर जय पाया है। आमीन। इसका आपके साथ कोई और संबंध है ही नहीं, आप आजाद हैं। उजाले में चलो जैसे वो उजाले में है, और यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, और हम एक दूसरे के साथ मिलकर संगति करते हैं। आप वहीं पर हैं। वो जो तुम में है बढ़कर है उससे जो संसार में है। अब यदि आप पीछे देखते हैं और अपने आप को दोषी ठहराते हैं तो तुम अब भी संसार में हो, लेकिन यदि तुम उससे ऊपर रह रहे हो तब वो जो आप में है आपको अंधेरे से ऊपर लेकर आया है। कमल की तरह वो कीचड़ के अंधकार से ऊपर है, वो अंधकार के कीचड़ के पानी से ऊपर है, वो उजाले में है जो उस कीचड़ को छोड़ने से पहले उस सुंदरता को दर्शाता है जो उसमें डाली गई थी। आमीन। अब मैं एक चिल्लाते हुए मसीह के जैसा अनुभव कर रहा हूँ। आरंभ में जो भी वहाँ था वो परमेश्वर के द्वारा था। इसने आगे बढ़कर इसमें से होते हुए अपने लिए मार्ग को बनाया, जय को पाया। इसने छिलके पर जय पाई, इसने कीचड़ पर जय पाई, इसने पानी पर जय पाई, इसने हर एक चीज पर जय पाई, और एक जय पाने वाला था और परमेश्वर की सुंदरता और महिमा को प्रतिबिंब किया। इसी तरह से एक विश्वासी करता है। इसी तरह से नूह ने ऐसा किया, इसी तरह से लूत ने किया, ये इसी तरह से है। देखो कि वह क्या ही गड़बड़ में था। इसी तरह से मूसा ने किया, इसी तरह से यहोशू ने किया, इसी तरह से दानियल ने किया, उसी तरह से शरदक मेशक ने किया था, इसी तरह से योना बपतिस्मा देने वाले ने किया था, जकरिया एलिशिबा, इसी तरह से शिमोन ने किया, इसी तरह से हन्ना उसमें के हर एक ने किया था। उन्होंने कीचड़ पर जय पाई जो कि उनके चारों ओर थी और वे उसमें से ऊपर आ गए, अपने सिर को उस चीज से ऊपर निकाला और परमेश्वर की महिमा को चमकाया। यही है जो एक सच्चा मसीह करता है। याद रखिए, यीशु ने उसे दिखाया यह कैसे हुआ। 40 दिन की परीक्षा उसकी परीक्षा किसी भी व्यक्ति से ज्यादा हुई थी जो कभी हो सकती है, यीशु मसीह की परीक्षा में जिसे कभी परीक्षा में लाया जा सकता था। ध्यान दें, उसने हमें दिखाया कि इसे कैसे किया जाता है। अब मैं कुछ ही मिनटों में बंद करूंगा। देखो, उसने हमें दिखाया कि इसे कैसे किया जाता है। उसने इसे कैसे किया? वचन के द्वारा। इसी तरह से उसने इसे किया क्योंकि वो वचन था। और यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। आप फिर से वचन के लिए जाते हैं, प्रतिज्ञा का वचन। हर एक मसीही के लिए प्रतिज्ञा का वचन क्या है? वो जो तुम में है बढ़कर है उससे जो संसार में है। तो मैं कैसे जय को पाऊं? मैं नहीं, लेकिन वो वचन जो मुझ में है, वचन परमेश्वर है, तब मैं संसार की चीजों पर जय को पाता हूँ क्योंकि ये वचन मेरे अंदर है। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में, तो केवल आप जो चाहो मांग लो, केवल आगे बढ़ते रहो। आप निश्चित रूप से किसी भी चीज से ऊपरी सतह पर आ रहे हो। देखा, आपको सबसे ऊपरी सतह पर आना होगा। उसकी 40 दिन की परीक्षा परमेश्वर के वचन के द्वारा उसने जय को पाया। मैं कुछ ही मिनटों के लिए कुछ तो व्यक्त करना चाहता हूँ। शैतान ने उस परीक्षा में उसके ऊपर 3 सबसे बड़े आक्रमण किए। ध्यान देना, ये हमेशा ही उसमें 3 है, इसे मत भूलना, समझे। उसने 3 सबसे बड़े आक्रमण किए, सबसे ऊंचे से लेकर निचले तक। उसने उसे जीतने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो वचन था। आमीन। उसने किसका उपयोग किया? खुद वो वचन। शैतान के 3 सबसे बड़े हमले या उसके ऊपर आक्रमण, लेकिन उसने वचन के साथ इससे मुलाकात की। हर एक हमले का वो इसका वचन के साथ सामना कर सका। अब इसे देखें, सबसे ऊंचे से लेकर निचले तक। सबसे पहले उसने अपनी बड़ी शक्ति का प्रयोग करके अपना हमला किया, जो कि वो जानता था कि वो वचन था। वो उसके स्थान को जानता था। क्या आप विश्वास करते हैं कि उसने जान लिया, मैं मनुष्य का पुत्र हूँ? वो अपने स्थान को जानता था। और शैतान आया और वो चाहता था कि वो खुद पर अपनी शक्ति का उपयोग करे भोजन के लिए। वो चाहता था खुद से ही भोजन करे। वह भूखा था। एक मनुष्य को भूख लगती है, वह लगभग कुछ भी कर सकता है। वह चोरी करेगा, लूटपाट करेगा, भीख मांगेगा, उधार लेगा, कुछ भी करेगा, समझे। उसे भूख लगी थी और शैतान ने उसके ऊपर उसका पहला सबसे बड़ा प्रहार का उपयोग किया ताकि उसकी शक्ति को ले कि जो उसे जय पाने के लिए दी गई थी और स्वयं पर इसका उपयोग करे। उसने खुद पर इसका उपयोग नहीं किया, नहीं, उसने इसका दूसरों पर उपयोग किया। यह सही है, उसने दूसरों पर इसका उपयोग किया, ना ही खुद के लिए। ये उसके लिए नहीं था, हालांकि वो इसे कर सकता था, वो निश्चित रूप से इसे कर सकता था। लेकिन देखा, शैतान किस तरह से आता है। शैतान चाहता है कि आप उस पर ध्यान दें। उसने केवल वही ध्यान दिया जो पिता ने करने के लिए कहा था। यह सही है। उसने कहा, क्यों? शैतान ने कहा, ऐसा लिखा है, वह दूतों को आज्ञा देगा। उसने कहा, हाँ, लेकिन ऐसा भी लिखा है, देखा, आप वहाँ पर हो, समझे। वह जानता था कि वो कौन था। शैतान ने जो लिखा है, विचार उससे ज्यादा गहरा जाते हैं। देखा, ये प्रेरणा है, दाना इसके अंदर होता है। आप देखो ये वास्तव में क्या है। हालांकि वह ऐसा कर सकता था, उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसने कभी भी शैतान के प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ एक अच्छी बात है, देखा, कभी कभी शैतान आपको ले सकता है और जब आप सोचने लगते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा को कर रहे हैं और आपको एक प्रस्ताव को दे सकता है, तो आप इसके लिए फंस जाएंगे। जी हाँ श्रीमान, वो निश्चय ही कर सकता है। अब आइए उदाहरण के लिए लेंगे, जैसे हमारी बहनें, वे सुंदर हैं और वह आपको एक ऐसे स्थान पर ले जा सकता है कि आप अपने बालों को बढ़ने देती हैं, आपको समझ नहीं आता, ये आप पर बहुत अच्छा लगता है। और पहली चीज जो आप जानते हैं, आपको एक प्रकार से थोड़ा घमंड और किसी से थोड़ा ऊपर महसूस होने को लगाता है। आप में से कुछ पुरुष आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, देखा, और वो उसी चीज को ले सकता है और इसे आपके साथ प्रस्ताव को रख सकता है। ये सही है, देखो आपको उस पर जय पाना होगा। बस याद रखें, आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, आपके पास एक उद्देश्य है और वो यीशु मसीह है। इसके बाद और कुछ भी मायने नहीं रखता है, ये वो ही है। उसके बाद अगला आपके परिवार के लिए, उसके बाद तीसरा अपने लिए, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर के लिए, दूसरा आपके परिवार के लिए और अगला आपके लिए। आप नंबर तीन पर हैं, यही मार्ग का अंत है, अपने आप को अंत में रखें। उसने किया, देखो वह क्या कर सकता था, कहा मैं अपने पिता को बुलाकर उससे बात कर सकता हूँ, वह सीधे मेरे लिए 12 दूतों के दल को भेज देगा, जबकि उसमें से एक संसार को नष्ट कर सकता था। कहा यदि मेरा राज्य इस संसार का होता था तो मेरे लोग मेरे लिए लड़ते, लेकिन मेरा राज्य ऊपर का है। आप वहाँ हो, देखा, भले ही वो इसे कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया, देखा, हालांकि वो यह कर सकता था, उसने कभी भी शैतान के प्रस्ताव की बात नहीं सुनी। अब क्या आपने लोगों को यह कहते हुए सुना है, यदि आप विश्वास करते हैं एक दैविक चंगाई देने वाला है, यदि आप एक दैविक चंगा करता है, जाकर अपने दैविक चंगाई देने वाले को लेकर आओ, मेरे साथ यहाँ एक बीमार व्यक्ति है, मैं उसे बीमार को चंगा करते देखना चाहता हूँ। उसी शैतान को देखा, वो आपके सामने प्रस्ताव रखने की कोशिश कर रहा है, वो आपको परमेश्वर की बजाय उसे सुनने को लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का असली सच्चा सेवक वो पहले सुनेगा और देखेगा कि पिता क्या कहता है, समझे। छोटे स्टेडस्लेव बालक के जैसे, जब उन्होंने उसे यहाँ पर भेजा और श्रीमती स्टेडस्लेव ने कहा, भाई ब्रैनम, मैंने जर्मनी से फोन किया है, एक अमेरिकी की सेना के जेट विमानों में से एक विमान बाहर मैदान में उतरा हुआ था, मुझे एक दिन में विमान से जर्मनी में ले जाकर और वापस लाने के लिए। वो एक पादरी था और बालक मृत पड़ा हुआ था, और वो छोटी माँ चिल्लाती हुई, उसने कहा, सुनिए, कहा मैं जानती हूँ, मैं वहाँ खड़ी थी और देखा कि उस महिला ने उस मृत बालक को अपने हाथों में पकड़ा था जो उस सुबह मर गया था। मैंने देखा कि भाई ब्रैनम ठीक वहाँ चलकर आते हैं, उस मृत बालक पर हाथ रखते हैं और उसमें जीवन आ जाता है। कहा यह मेरा बालक है भाई ब्रैनम, ऐसे उनके परिवार में कभी मृत्यु नहीं हुई, देखा। और इस छोटे से बालक की एक सुबह तबीयत खराब हो गई और उसी दोपहर को मृत्यु हो गई। यहाँ वे सभी लोग चारों ओर खड़े थे और भविष्यवाणियां और इत्यादि कर रहे थे, बालक जीवित होने जा रहा है और इसी तरह से सब। मैंने कहा, ठीक है, यह बहुत अच्छी बात है बहन स्टेडस्लेव, लेकिन मुझे देखने दो कि पिता क्या कहता है। मैं जंगल में चला गया और मैंने प्रार्थना की, वापस आया, वो दो या तीन बार फोन कर चुकी थी, क्योंकि मैं अगली सुबह को वापस आया, कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, कहा यदि ऐसा है, यदि आपके पास उस तरह का विश्वास है तो महिला, हम बच्चे को अस्पताल से नहीं छोड़ेंगे, इसे यहीं पर रहने दे, आप इसके साथ यहीं पर रुके रहें, यह ठीक बात है। भाई स्टेडस्लेव ने जाकर और सेना प्रमुख से मुलाकात की, उसने कहा, जरूर हम उन्हें वहाँ विमान से ले जाकर और उन्हें वापस लेकर आएंगे। और वहाँ एक विमान खड़ा हुआ था, रुका हुआ था, ताकि उस सुबह मुझे वहाँ पर लेकर जाए और उस रात मुझे वापस लेकर आए जर्मनी हेडलबर्ग की ओर, इस बालक के पुनरुत्थान के लिए। मैंने कहा, निश्चय ही परमेश्वर इसे कर सकता है, लेकिन देखते हैं कि उसकी इच्छा क्या है। तब मैंने बाहर जाकर सारी रात प्रार्थना की, कुछ भी नहीं हुआ। अगली सुबह को वापस आया, कुछ भी नहीं हुआ, और मैं कमरे की ओर जाने लगा। तब उसके बाद मैंने वहाँ पर देखा और वहाँ पर प्रकाश दरवाजे पर रुका हुआ मंडरा रहा था। कहा उस पर अपना हाथ मत डालना, उसे फटकार मत लगाओ, यह परमेश्वर का हाथ है। मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा, बहन स्टेडस्लेव, अपने बच्चे को दफना दें, इसमें प्रभु का हाथ है, यह एक परमेश्वर की इच्छा है। उस बच्चे की रेखा के साथ कुछ तो हुआ होगा, आप ठीक इसे करें, जहाँ परमेश्वर जानता है कि यह कहाँ पर है, अब आप इसे इसी तरह से कर सकते हैं, यह जीता है, आप नहीं करेंगे, आप इसे ठीक उसी तरह छोड़ दें। जर्मनी में उस बड़े लूथरन प्रचारक ने एक पत्र लिखा और कहा, मैं किस तरह से सराहना कर सकता हूँ जो भाई ब्रैनम कुछ भी कहने से पहले परमेश्वर के उस स्पष्ट निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा ही है, परमेश्वर के निर्णय को पकड़े रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या कहते हैं या जो भी है, शैतान के प्रस्ताव को ना लें। यदि शैतान कहता है अब पानी का बपतिस्मा, पिता पुत्र का नाम, यदि ऐसा वो कभी प्रस्ताव करता भी है, आप ऐसा ही छोड़ दें, अन्यथा जो परमेश्वर ने कहा। यदि वो कहता है आप एक भले इंसान हैं, आपको ऐसा नहीं होना है, आप एक भली महिला है, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रस्ताव को नहीं लेना। यदि वचन कुछ तो अलग कहता है तो आप बिना इसे ध्यान दिए कि ये क्या है वचन के साथ बने रहें। यीशु ने आपको यही उदाहरण दिया है और वहाँ उस बड़े प्रहार देखो जो उसने उस पर किया, तब दूसरा प्रहार मैं जल्दी करूँगा, बस ऐसा दिखाई देता है कि समय बहुत जल्दी निकल रहा है। अगला जो बड़ा हमला था कि उसने उस पर किया कि उसे एक प्रदर्शन करना होगा, वो किस तरह से यह परमेश्वर के सेवकों को वार करता है एक दिखावा बनने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया, मैं छुड़ाने वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ, समझे? देखा, यहाँ मंदिर के ऊपरी भाग में आओ और यहाँ नीचे बैठ जाओ। उसने उसे ऐसा करने का प्रयत्न किया। अब याद रखे, वो इसे करने के लिए पूरी तरह आकर्षित हुआ था। कहा, अब यदि तुम लोगों के सामने कुछ बनना चाहते हो तो यहाँ इस मंदिर पर खड़े होकर कूदो। देखा, मैं तुम्हें इसके लिए एक वचन को दूंगा, क्योंकि ऐसा लिखा है, वो दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, ऐसा न हो किसी भी समय किसी पत्थर से तेरे पैरों पर ठेस लगे, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। उसे एक दिखावा करने को लगाने के लिए, उसे उसका अधिकार दिखाने के लिए, परमेश्वर का सच्चा सेवक कभी भी ऐसा नहीं करता है। आप एक व्यक्ति को दिखावा करते हुए देखते हैं, उसकी छाती बाहर होती है और इसी तरह से सब, बस याद रखें, वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। यीशु ने उदाहरण को रखा, वह इसे कर सकता था, वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर का कोई भी सेवक अपना खुद का दिखावा नहीं करता है कि परमेश्वर की सामर्थ को लेकर और किसी और से खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश करे। आपको याद है कि मूसा ने ऐसा किया था, क्या ये याद है? परमेश्वर ने जो वह चाहता था उसे करने की सामर्थ को दिया था, उसे एक भविष्यवक्ता बनाया। वह उस चट्टान के पास चला गया और उसने दूसरी बार चट्टान को मारा, यह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था। परमेश्वर ने कहा, उस चट्टान से बोलो, इसे दोबारा मत मारना, तुमने यहाँ पर इस नमूने से अलग ही किया है, चट्टान को केवल एक बार मारा जाना होगा। लेकिन जब उसने ऐसा किया, वो वचन की निर्बलता को बताता है, ये ठीक नहीं था। जी हाँ, वो वचन था जो आगे जा रहा था, वह चट्टान वचन था। देखा, उसने पहली बार चट्टान को मारा और पानी बाहर आया, और तब उन्हें फिर से प्यास लगी। उसने कहा, अब वापस जाओ और चट्टान से बोलो, इसे केवल एक बार मारा गया था। देखा, वचन की कमी। मूसा ने इसे बताया कि वचन सही नहीं था, उसे वापस मारा जाना था। सो मूसा वहाँ पर गया और इस तरह से चट्टान को मारा, कहा बाहर आ, बाहर नहीं आया, इसलिए उसने फिर से मारा और कहा बाहर आ, मैं तुम्हें बाहर आने की आज्ञा देता हूँ, और पानी आने लगा। परमेश्वर ने कहा, यहाँ ऊपर आओ, यहाँ आओ, तुमने खुद की महिमा की है, तुमने मेरी सामर्थ को लिया, मुझे पवित्रीकरण करने के बजाय तुमने स्वयं को पवित्रीकरण किया, अब तुम उस देश पर नहीं जा रहे हो। वहाँ पर देखो, देखो ये कैसा दिखता है, लेकिन यहाँ तुम्हें ठीक यहीं पर छोड़ना है। ओह प्रभु, मूसा की तरह कभी कोई एक भी नहीं रहा, आप जानते हैं? नहीं नहीं, जब वह यीशु के साथ उस दिखावा करने में आया तो उसने कहा, यहाँ ऊपर मंदिर पर चढ़ और कूद जा। उसने कहा, ऐसा लिखा है, आमीन, तू परमेश्वर अपने प्रभु की परीक्षा मत कर। देखा, उसने उससे उस पर वचन से सामना किया और हर एक बड़े प्रहार का। कोई भी सच्चा सेवक कभी भी परमेश्वर की सामर्थ के साथ खुद को दिखाने की कोशिश नहीं करता है, यदि वो करता है तो तब वो वहीं पर हार जाता है। तीसरा बड़ा प्रहार, शैतान ने इस राज्य के अधिकार को उसे देने का प्रस्ताव किया, उसने ऐसा किया। शैतान ने कहा, संसार के इन राज्यों को देखते हो, ये मेरे हैं, मैं उनके साथ जो कुछ भी करना चाहता हूँ उसके साथ करता हूँ, मैं उनका अधिकार तुम्हारे लिए दे दूंगा। लेकिन याद रखना, वह क्रूस के बिना इसका अधिकार उसे देने की कोशिश कर रहा था, यदि वो करता तो हम खो जाते। वह उस राज्य को ले सकता था, लेकिन उसे करना ही, उसे वापस आना ही है। वह अब ऐसा करने के लिए परखा गया था, मौत एक कठिन बात है, वह बिना क्रूस के उसकी स्वतंत्रता को लेने और धरती का राजा होने के लिए आकर्षित किया गया था, लेकिन यदि वो करता तो उसके लोगों की मृत्यु हो गई होती। शैतान ने आनंद से उस प्रस्ताव को उसके सामने रखा होगा, लेकिन उसने कहा, मुझसे दूर हट शैतान, उसने ऐसा नहीं किया। उसने आकर उस बात को सहा और कठिन उबड़ खाबड़ मार्ग को लिया, उसने सतावट के मार्ग को लिया, उसने मृत्यु के मार्ग को लिया। क्या हम आज सुबह ऐसा करने की इच्छा को रखते हैं, उसी मार्ग को लेना जो उसने लिया था? क्या हम मरने को तैयार हैं क्या हम अपने आप को परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं, सारे संसार और चीजों को छोड़ने के लिए उसके लिए सेवा करने के लिए तैयार हैं। देखा, अब शैतान ऐसा करने में असफल रहा, खुद की इच्छा से उसके अधिकार को छोड़ रहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। भले ही यीशु परीक्षा में था, उसने हमारे लिए जय को पाया। उसने मेरे और आपके लिए सारी परीक्षा को सहन किया। देखा, वह इसे तभी ले सकता था, लेकिन उसने दूसरे मार्ग को किस लिए लिया? ताकि हम आ सकें, उसके साथ रहें। और यदि उसने इस तरह की कीमत का भुगतान किया, इसकी तुलना में हम कितने छोटे होंगे कि इसे न लें। जब याद रखें, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो, यदि आप 100 वर्ष जीवित रहते हैं तो आप किस बात के लिए आते हैं? मानसिकता और आपका दिमाग चला जाता है, सब विकलांग हो जाता है और बूढ़े और कमजोर होने लगते हैं। यही है वो जहां आप जा रहे हैं और यही इसका अंत है। अब आपको आकर इस बात पर जय पाना है। आप ये कैसे करते हैं? वचन के द्वारा। वचन क्या कहता है, आप इसे करें। नम्रता से चलना, यीशु के समान जीना। उसने आपके और मेरे लिए सभी बातों को सहन किया। वह हमारा उदाहरण है कि कैसे उस दुष्ट पीढ़ी पर जय पाएं, क्योंकि उसने उसकी दुष्ट पीढ़ी पर जय पाई थी। याद रखें, जब वह धरती पर आया, वहाँ पर बस उतना ही अविश्वास था या अधिक, किसी भी समय से कहीं ज्यादा था। इससे वो जरा भी परेशान नहीं हुआ था। जब उन्होंने उसे परमेश्वर कहने के बजाय शैतान कहा, जब उन्होंने उसे वो सब कुछ कहकर बुलाया जो बुलाया जा सकता है, इससे वो थोड़ा भी परेशान नहीं हुआ था। उसके पास एक उद्देश्य था, पिता की ओर ध्यान दे, वचन को बनाए रखें। वचन परमेश्वर है, उसके पास एक मन था। हम कभी कभी वापस जाने के लिए बहक जाते हैं। आप में से कई लोग संप्रदाय में वापस जाने के लिए बहक जाते हैं, वापस जाकर और अपना लेते हैं, क्योंकि सारा संसार कहता है आप किस संप्रदाय से संबंधित हैं, आप किस कलीसिया के साथ संबंध रखते हैं। हम ऐसा करने के लिए प्रयत्न करते हैं, हम सभी करते हैं। हमारी बहनें वापस जाने के लिए बहक जाती हैं, वापस जाकर और कुछ बाकी के कलीसिया के साथ जुड़ जाएं, कुछ संगठन या परमेश्वर की कलीसियाएं या उनमें से कुछ के साथ, फिर भी पेंटिकॉस्टल बने रहें, अपने बालों को काटें और बस किसी भी तरह के कपड़े पहने जैसे आप चाहते हैं। देखा, आप ऐसा करने के लिए आकर्षित होते हैं, वापस जाकर और इस दुष्ट पीढ़ी के साथ लोकप्रिय होना जिसके साथ हम रह रहे हैं, जबकि यह हमारे दिनों का बड़ा पाप है। ये हमारे लोगों के बीच बड़ा पाप है, सांसारिकता है, जैसा कि बाइबल ने लौत के युग में कहा था, यह सांसारिक है। धनी किसी भी बात की आवश्यकता नहीं जानते हैं कि वो नंगी, बेबस, लाचार और अंधी है। यही हमारे दिन का पाप है। जब आप परमेश्वर के वचन को इसके विरोध में बोलते हुए सुनते हैं, तो आप दूसरे मार्ग को ले लेते हैं। आप संसार के साथ अलोकप्रिय हैं और वापस जाने के लिए आकर्षित होते हैं। मैं जानता हूँ आप मुझसे कहते रहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप कहते हैं हर समय, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे इन चीजों पर सुनते सुनते थक गए हैं। मैं भी आपको इसे करते हुए देखकर थक गया हूँ। यह सही है, यह पाप है जिसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं आप इसके लिए क्या बार बार बता रहे हैं, तब इसे रोक दूं? मैं वचन के द्वारा आपका जीवन बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी थक चुका हूँ, सो बस आप ठीक कर लें। यह एक पाप है जो नहीं किया जाना चाहिए। जी हाँ श्रीमान, हमने इन चीजों पर जय पाया है। हम उनसे परखे जाने की अपेक्षा करते हैं जो संसार है। यीशु ने कहा, आप संसार और संसार की चीजों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का प्रेम आप में है ही नहीं। अब हम बस बंद कर देंगे और यह कहकर जय पाने वालों के लिए एक इनाम है। मैं आपके लिए यहाँ कुछ पढ़ूंगा, अपने बाइबल को खोलें। आइए वापस प्रकाशित वाक्य के तीसरे और दूसरे अध्याय पर जाएं। अब यहाँ इन सारी चीजों के विषय पर देखें जिस पर मैं बोलते आ रहा हूँ, जय पाने पर। अब बस खुद की ओर देखें और समझें, अपने आप को आध्यात्मिक दिखने वाले आईने में जांचें, देखें कि यहाँ क्या आपने जय पाई है। अब पहला संदेश इफिसियंस के दूत के लिए, मैं चाहता हूँ कि आप सुने जो उसने कहा है। और प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 7वां पद, वह उस कलीसिया युग के लिए है जब उसने उस सभी को बताया जो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहले प्रेम को छोड़ दिया। 7वां पद, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, वो व्यक्ति न ही कलीसिया। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। देखा, इफिसियस में जो जय पाने वाले हैं। अब अगला स्मरणा था, अब उसमें जो जय पाने वाले हैं, हम इसे सुनेंगे। अब 11वां पद, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। देखा, उन्होंने इस पर जय पाया। अब यह पेरगमून को देखें, हम यह देखेंगे कि इसके लिए जय पाने वालों के लिए क्या रखा था। हम पेरगमून कलीसिया में 17वें पद को पढ़ेंगे। जिसके कान हो, यह व्यक्तिगत के लिए है, न ही पूरे झुंड के लिए है। वो व्यक्तिगत जो दुल्हन बाहर आ रही है, आप देखें, वो कलीसिया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। यही उस कलीसिया युग के जय पाने वाले हैं। अब अगला थुआतीरा है। आइए जानें कि उस दिन के जय पाने वालों के पास क्या था। आइए 26वें पद को लें। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। ये सही है। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। देखो, उसके साथ उसके सिंहासन में मसीह को राष्ट्रों पर लोहे के राजदंड के साथ राज्य करना है, और यहाँ वह कलीसिया है जिसने जय पाई है। लोहे के राजदंड के साथ राष्ट्रों को तोड़ने के लिए वहाँ उसके साथ बैठे हुए हैं। अब उन्हें सर्दिस कलीसिया से लेंगे। अब 3वें अध्याय का 5वां पद, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके सरदूतों के सामने मान लूंगा। यह सर्दिस में जय पाने वालों के लिए है। अब 12वें पद को अब लें। अब यह 12वां पद फिलेदिपिया की कलीसिया के लिए है। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। देखें कि जय पाने वाले की क्या प्रतिज्ञा है, समझे। अब लौदिकिया, अब वो आखिरी कलीसिया काल है। यहाँ पर कुछ जय पाने वाले होंगे, यहाँ ध्यान देना। वे याद रखें, हरेक कलीसिया काल, हरेक जो इससे पहले के लोगों ने इसे विरासत में पाया, वो सब उन अन्य लोगों को दिया गया था। यहाँ पर देखें, अब यहाँ इन सारी सामर्थ को प्राप्त करने के बाद ये नए नाम और जो कुछ लिखा हुआ है जिसकी उसने प्रतिज्ञा की और छुपे हुए मन्ना को खाया, और वो सब वहाँ से लेकर इन आखिरी कलीसिया काल को देखें। प्रकाशित वाक्य 3:21, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन में बैठाऊंगा, आमीन, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन में बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जय पाने वालों के लिए एक इनाम है। आगे बढ़ो, कमल के फूल, यदि यह आप में है तो कीचड़ और वो बाकी सब कुछ को एक तरफ करके और ऊपरी सतह की तरफ बढ़े। जी हाँ श्रीमान, मेरे सिंहासन पर मेरे साथ बैठेगा। आप जानते हैं, एक बार याकूब और यूहन्ना की माँ, हमारे पास इसे पढ़ने का समय नहीं है, याकूब और यूहन्ना की माँ ने आकर और इस स्थान के लिए मांगा। क्या आप यह जानते हैं, यह याद है, प्रभु मेरा पुत्र एक तरफ बैठे और मेरा दूसरा पुत्र दूसरी ओर बैठे। यह उसके पुत्र के लिए माँ की इच्छा है। लेकिन ध्यान दें, लेकिन वो स्थान यीशु ने कहा पहले से ठहराया गया है, वो स्थान को लेने के लिए उस समय पर कोई अस्तित्व में नहीं था। क्यों? ध्यान दें, यह उन लोगों को दिया जाएगा जिनके लिए ये मायने रखता है। क्या वो एक जो दाहिने हाथ पर बैठने वाला है और वो दूसरा जो उसके पास होना है, अभी भी उनको जय पाने वाला होना था। देखा, ये अभी भी होना था। उसने कहा मैं इसे प्रदान नहीं करता हूँ, मैं इसे प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन परीक्षा आने के बाद इसे दिया जाएगा, आमीन। देखा, मैं इसे नहीं दे सकता, लेकिन परीक्षा के बाद वे दाएं और बाएं हाथ पर बैठेंगे। इसके लिए उस ओर पहले से ठहराए हुए बीज रुके हुए हैं। यह उन लोगों को दिया जाएगा जिनके लिए इसकी प्रतिज्ञा की गई है, इसे वहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन परीक्षा अभी तक नहीं आई थी, जो उसने अभी तक जय को नहीं पाया था, समझे। वह व्यक्ति जो उसके पास राज्य में एक और इस स्थान को लेने वाला था, और दूसरा इसे दूसरी ओर इस स्थान को लेने वाला था, इसे अभी तक दिया नहीं गया था। देखो, जय को नहीं पाया गया था, परीक्षा अभी तक नहीं आई थी, यह भविष्य में आएगी। यदि हम मसीह और उसके वचन के लिए सहन करते हैं तो हम उसके साथ राज्य करेंगे, क्योंकि वो वचन है। याद रखें, यदि हम मसीह और उसके वचन के लिए सहन करते हैं तो हम उसके साथ राज्य करेंगे उसके वचन में। ध्यान दें, वो हमारा उदाहरण है। उसने जय पाई और फिर वो उसके मृत्यु, अधोलोक, बीमारी, कब्र पर जय पाने के बाद ऊपर उठाया गया। हर एक चीज पर उसने जय प्राप्त की। इसलिए वो कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। वह पुराना नियम था। पुराने नियम के संतों के साथ जिन्होंने जय पाई थी, वे ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे थे और वे मर गए इससे पहले वो वहां पहुंचे। लेकिन जब यह व्यक्ति आया, इसने उन लोगों को नहीं रोका जो सोए हुए थे। आमीन। किसी भी तरह से खो नहीं सकता है, जीऊं या मरूं इससे क्या फर्क पड़ता है, इसे नहीं रोकेगा। समझे, वे इसके लिए देख रहे थे। यहाँ तक कि पहले अय्यूब भी वो इसके लिए देख रहा था। उसने कहा, मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंतिम दिनों में वह धरती पर खड़ा होगा। वहाँ एक धर्मी मनुष्य था, एक सिद्ध मनुष्य। उसने बलिदान को चढ़ाया, उसने वो सब कुछ किया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। उसने इसे सम्मान और आदर के साथ किया। वह एक भविष्यवक्ता था। और फिर शैतान उसे परीक्षा देने के लिए उसके पास आता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो आपकी परीक्षा करने के लिए आता है। उसने क्या किया, वह वहीं खड़ा रहा। यहाँ तक उसकी पत्नी ने भी बाहर आकर कहा, क्यों नहीं तुम परमेश्वर को शाप देकर और मर जाते, तुम वहाँ इतने दयनीय दिखाई दे रहे हो। उसने कहा, तुम मूर्ख स्त्री की तरह बात करती हो। अब उसने कभी नहीं कहा कि वह मूर्ख थी, लेकिन उसने एक मूर्ख की तरह बात की। देखा, कहा तुम एक मूर्ख स्त्री की तरह बात करती हो। कहा, प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। उसने जय पाई। पड़ोसियों का जो कहना था, उसने उस पर जय पाई। जो सारे कलीसिया के सदस्यों, बिल्दत और सभी का जो कहना है, उसने उस पर जय पाई। उसने बिशप पर जय पाई और जो उसका कहना था। उसने कार्डिनल पर जय पाई जो उसका कहना था। उसने संप्रदाय पर जय पाई जो उनका कहना था। और वो धर्मीकरण के वचन के साथ बना रहा। आमीन। फिर भी उसके पास जो था उसकी कीमत चुकानी पड़ी, यहाँ तक उसके बच्चों की भी। वो इस पर बैठकर अपने फोड़े को ठिकड़े के टुकड़े के साथ थदोड़ने लगा और फिर भी उसने जय पाई। और जब वो बड़ी परीक्षा की घड़ी अतः सफल हुई तो वे बादल पीछे हटने लगे। उसने हर एक विचार पूर्ण करने वाली चीज को देखा। उसने कहा, पेड़ में एक आशा है, यदि यह मर जाता है तो यह फिर से जीवित होता है। और एक बीज जमीन में गिरता है, यह सड़ने लगता है, यह फिर से जीवित होता है। लेकिन एक मनुष्य नीचे चला जाता है और आत्मा को छोड़ देता है, वह नष्ट हो जाता और उसके बच्चे आकर उसके पुत्र उसके आदर के लिए और उसके ऊपर शोक करते हैं। वो इसे नहीं समझ सका, वो फिर से नहीं उठता है। ओह, वो वहीं पर है। क्या बात है, मैं भी एक बीज हूँ। मैं कुछ तो हूँ जो एक बीज है और मैं जमीन पर चला जाऊंगा। मैं फिर से नहीं उठ सकता हूँ, मैं वहीं पड़ा रहूंगा। ओह, मुझे कब्र में छुपाए रख, मुझे अपने गुप्त स्थान पर रखे रह, तेरे क्रोध के ठंडा होने तक मेरे लिए एक समय को नियुक्त कर और मेरा न्याय कर। और पत्थर जल से घिस जाते हैं और भूमि की धूली उसकी बाढ़ से बहाई जाती है। और वो इन सारी बातों को बोलते ही जा रहा था। वो वहाँ सारे उदाहरण को वहाँ देख सकता था। ये क्या था, ओह, वो बस इसे नहीं देख सका। और बहन रोजर्स, याद है जब मैंने बस्ती के अंतिम संस्कार में इसका प्रचार किया था, देखा कैसे वह पत्थर जल से घिस जाते हैं, किस तरह से ये बातें होती हैं। ओह, तू मुझे कब्र में छुपा ले और मुझे गुप्त स्थान में बनाए रख। वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं जान जाता, मेरी इच्छा है कि मैं जान जाता कि मैं कहाँ जा सकता हूँ। एक व्यक्ति जो मुझ पर हाथ रख सकता है, इस पाप से भरे मनुष्य और एक पवित्र परमेश्वर पर, और मेरे लिए उससे बातें करे। ओ प्रभु, वो वहाँ पर है। मैं जानता हूँ कि वो वहाँ पर है। वहाँ पर कोई तो है जो ऐसा कर सकता है। वहाँ पर कोई तो एक कहीं तो है। आमीन। मैं उस व्यक्ति को कहाँ ढूंढ सकता हूँ, मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ। मैं उसके दरवाजे को खटखटाऊंगा और उससे बात करूंगा। यदि कोई केवल मुझ पर अपना हाथ रखे और परमेश्वर पर अपना हाथ रख सकता हो और मेरे लिए बिचवाई के मार्ग को कर सकता हो, वो बात करे। यदि मैं केवल उस व्यक्ति को ढूंढ सकता, ओह, वो कहाँ है। उसने अपने कलीसिया के अंदर ढूंढा उसने अपने संगठन के अंदर ढूंढा था, वो ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ सका और अचानक बादल पीछे हटने लगे और उसने उस व्यक्ति को आते हुए देखा। ओह, उसका बूढ़ा हृदय आनंद से धड़कने लगा। तब कुछ तो घटित हुआ। मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ऐसा एक व्यक्ति है, आमीन, अभी भी ऐसा एक व्यक्ति है। मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और भले ही खाल के कीड़े इस देह को नष्ट कर दे, तो भी मेरे शरीर में से होकर मैं परमेश्वर को देखूंगा, जिसे मैं अपने लिए देखूंगा। वो अंतिम दिन में धरती पर खड़ा होगा। उस ईस्टर की सुबह को जब वो उस ओर उठ गया और अय्यूब की देह चम्मच भर राख से ज्यादा नहीं थी, वो रुका हुआ था, वो चुना हुआ झुंड था। वो कब्र से जी उठा और उसने अब्राहम, इजाक, याकूब, अय्यूब के साथ शहर में प्रवेश किया। ओह प्रभु, आमीन, क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे थे, और उन लोगों के लिए जो मसीह के दूसरे आगमन के लिए देख रहे हैं, जो इस संसार की चीजों पर जय पा सकते हैं उसके अनुग्रह के द्वारा उसके अंदर आने के लिए, और उसके और उसके वचन को छोड़ अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, वह महिमा में दूसरी बार प्रकट होगा, क्योंकि परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे वे पल भर में पलक झपकते ही बदल जाएंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। चाहे मैं राख भर चम्मच रहूं या मैं जीवित रहूं, जब वो आता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आमीन, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने दर्शन को पकड़ लिया है, पर्दा पीछे हट गया है और मैं उसे देखता हूँ। वो एक जो खड़ा हो सकता है और मुझ पर अपना हाथ रख सकता है, इस एक पापी मनुष्य पर और पवित्र परमेश्वर पर, और वो मेरी प्रायश्चितता है, वह वचन है जिसके लिए मैं खड़ा हूँ। आदि में वचन था, वह वचन है, और वह वहाँ मुझे प्रतिनिधित्व करता है, आमीन। और जब तक मैं सांस लेता हूँ तब तक मैं इसे चिल्लाऊंगा कि वह मेरा पुनरुत्थान और मेरा जीवन है, और बाकी की सारी भूमि धसती हुई रेत है, बाकी की सारी भूमि धसती हुई रेत है। जैसे वो उन्हें दिखाई दिया जो उसके लिए देख रहे थे, वैसे वो नए नियम के संतों के पास आएगा, जिसने हर एक संप्रदाय के निंदकों पर जय पाई है, जिसने इस दिन के सभी जाने माने पापों पर जय पाई है, इस युग के जिसमें हम अब रह रहे हैं, जैसे उसने अन्य सभी कलीसिया युग में किया जिन्होंने उस कलीसिया युग में जय पाई। वे लोग किस पर जय पाते हैं? मैं धनी हूँ, मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं है, मेरे पास, ओह, मैं ये सब हूँ और ये सब, और मैं दुल्हन हूँ, मैं ये हूँ, मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं है, और ये नहीं जानते कि तुम नंगे हो, अंधे हो। उस भरमाने वाले युग को देखा जो मैंने बताया, यह उन लोगों की तरह नहीं है जिन्होंने सफेद पत्थर को पाने के लिए वहाँ पहले अपने सर को कटवा दिया, न ही उन लोगों के जैसे जो शहीद होकर मर गए और जलाकर उन्हें मार दिया गया, और इसी तरह की चीजें जिन्होंने ताज को जीता। लेकिन अब यह भरमाने वाला युग है जो सोचता है कि वे सब कुछ हैं। अच्छा, मैं एक कलीसिया का सदस्य हूँ, मैं एक भला पुरुष हूँ, मैं एक भली महिला हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मुझे वैसा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो जो जय पाता है, वो जो इस युग की उन सारी सांसारिक चीजों पर जय पाता है, वे क्या करेंगे? वे सभी उसके सिंहासन में उसके साथ बैठेंगे। जब वो आता है वे रैप्चर में जाएंगे। ओ प्रभु, तब मुझे क्या फिक्र करना है? हमें क्यों फिक्र करना चाहिए कि संसार क्या कहता है? हमें क्या फिक्र करना चाहिए कि और कोई क्या कहता है? महान पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, उसका अग्नि का स्तंभ हमें आगे ले जाता है और हमारा मार्गदर्शन करता है, उसका वचन हमारे सामने प्रमाणित हुआ है, उसका प्रेम हमारे हृदय में है, संसार पीछे है, हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। संसार सोचता है कि आप पागल हो, लेकिन निश्चय यीशु ने अकेले ही इस क्रूस को सहन किया और सारा संसार आजाद हो जाता है। हर किसी के लिए एक क्रूस है और मेरे लिए एक क्रूस है। 33 वर्ष से कार्य क्षेत्र में हूँ और यह पवित्र क्रूस मैं सहन करूँगा जब तक मृत्यु मुझे आजाद नहीं करेगी। मेरे भाई, मुझसे मुंह मोड़ने दो, जो भी वे चाहते हैं कहें, जो भी मुझसे मुंह मोड़ने दो, लेकिन इस वचन पर मैं खड़ा हूँ और केवल इसी पर। इस पवित्र क्रूस को मैं सहन करूँगा जब तक मृत्यु मुझे आजाद नहीं करेगी, और फिर घर जाऊँगा रैप्चर में एक ताज पहनने के लिए। यही है वो जिसे हम सब चाहते हैं, क्या नहीं चाहते? यही है जो हम चाहते हैं, यह हमारी आशा और याचिका है। हमारे पास कोई और विचार नहीं है, लेकिन वो एक यीशु मसीह पर है और उसकी केवल धार्मिकता पर हम खड़े हैं। उसके वचन में उसकी धार्मिकता है, और वचन देहधारी हुआ था और हमारे बीच में रहा, और वो वचन अब भी खुद को प्रमाणित कर रहा है। कैसे जय पाना है? वचन को लेने के द्वारा उस प्रतिज्ञा को नम्रता में, नम्रता से चलकर इस पवित्र क्रूस को मैं सहन करूंगा जब तक मृत्यु मुझे आजाद नहीं करेगी, और फिर घर जाऊंगा एक ताज पहनने के लिए, क्योंकि जब वो तुरही फूकी जाती है आप मुझे समुद्र में दफन कर सकते हो, लेकिन तुरही मुझे जागृत करेगी। सही है, मैं एक दिन घर जा रहा हूँ। आमीन। तब तक के लिए मैं संघर्ष करूंगा। आमीन। इस क्रूस को लेकर मेरी आंखें लोगों पर न लगाकर, लेकिन वहाँ उस क्रूस पर रखूंगा, क्योंकि वह मेरा उदाहरण था। उसने दिखाया कि इसे कैसे करना है, और उसके उदाहरण को दिन प्रतिदिन हम खुशी से इसका अनुकरण करेंगे। मैं मार्ग के हर कदम पर यीशु के पीछे चल रहा हूँ। मैं मार्ग के हर कदम पर यीशु के पीछे चल रहा हूँ। क्या आप इसे पसंद नहीं करते हैं? ओ, मैं किस तरह से दिन प्रतिदिन सोचता हूँ मार्ग के हर कदम पर उसका अनुकरण करूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, अब 1 घंटा और 15 मिनट से मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपका वचन लेकर और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे जय को पाना है। आपने हमें बताया कि यह कैसे किया जाता है। आपने हमें केवल बताया ही नहीं, लेकिन आपने दिखाया कि यह कैसे किया गया था। आपने हमारा नेतृत्व किया, आपने हमें दिखाया इसे कैसे करें। हमारे अंदर वचन को लेने के द्वारा और वचन को पकड़े रहने के लिए निश्चित होना है। ऐसा लिखा है, यह कहते हुए हर एक परीक्षा में लेकिन नम्र बने रहे, नम्रता से चले, तब हम आपके जरिए से जय पाते हैं, आपके सामर्थ्य के जरिए से जय को पाते हैं, जिसने पहले से ही हमारे शत्रु पर जय प्राप्त कर ली है। और बस एक चीज हमें करना है कि केवल विश्वास के साथ नम्रता से चलना है, यह विश्वास करते हुए और पवित्र आत्मा की हमारी पहचान की छाप और शैतान को जाना होगा। यहाँ रुमाल रखे हुए हैं जो बीमार लोगों के लिए प्रतिनिधित्व को करते हैं, वे आवश्यकता में हैं प्रभु, और उन्होंने इस न चूकने वाले वचन में पढ़ा है जहाँ उन्होंने संत पौलुस के शरीर से रुमालों और कपड़ों को लिया, उन्होंने बीमार लोगों पर रखा, उसमें से दुष्ट आत्माएं निकल गईं और महान अद्भुत कार्य किए गए। अब आज भी आप वही प्रभु यीशु हैं। पौलुस ने इस वचन का प्रचार किया और इस वचन को लिखा, वही वचन जिसका हम अनुकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसने पुराने नियम को लिया और इसे रूप दिया और दिखाया कि ये एक नमूना था, कि पुराना नियम नए का एक सिद्ध नमूना था। हे प्रभु, होने पाए हम उस उदाहरण का अनुकरण करें। हम हमारे परमेश्वर को देखते हैं जो उसने किया, और हम समझते हैं कि वे पुराने नियम के संत आज सुबह हम देखते हैं कि वे चले गए थे जब यीशु जी उठा और वे उसके साथ चले गए। और प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि हम जाएंगे जब वो तुरही को फूकेगा। हम इसे विश्वास करते हैं कि उस दिन दुल्हन आगे जाकर और उस इब्रानी झुंड के साथ जुड़ जाएगी और एक साथ में रहेंगे। वहाँ महिमा में एक विवाह का भोज होगा, वे जो रुके हुए हैं। हम अब आपकी दया और अनुग्रह हम पर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जय पाने वाले प्रभु, जय पाने वाले हम होना चाहते हैं, हमें जयवंत कर। प्रभु यीशु, आपने संसार पर जय पाई, अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आज सुबह यहाँ हर व्यक्ति को जयवंत होने दें। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। पौलुस इसे बताता है हमारे स्वर्गीय पिता वहाँ इब्रानियों की किताब में 12वें अध्याय में कि हमें हर एक रोकने वाली वस्तु को एक तरफ करके, उस 12वें अध्याय में उसने ये बात की। वहाँ पीछे उसके पहले से ही उदाहरण के द्वारा दिखाने के बाद, वहाँ जो लोग आगे गए, जो लोग आगे नहीं गए, वे जो गुनगुने रूप से अनुकरण करते थे, वे जो आगे जाकर अनुकरण करते थे, वे जो धीमे धीमे से पीछे आते थे, उसने सारे उदाहरण दिखाए। तब उसने मुड़कर कहा, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर करके, हर एक बहुत ही छोटी छोटी बातें जो हमें परेशान करती हैं, ताकि हम धैर्य के साथ दौड़ को दौड़ सके जो हमारे सामने रखी हुई है, उसे देखकर जो लेखक और हमारे विश्वास का कर्ता है जिसने हमें उदाहरण दिया, हम आज सुबह इसे करते हैं पिता। बस हमारे सिरों को झुकाने के साथ अब वास्तव में नजदीक से जांचें बिल्कुल वास्तविक नजदीक से और फिर गंभीर तौर से गहराई से ईमानदार बने रहें, यह बस इसे ले लेता है, यह बस सब कुछ ले लेता है। आपका जांचना और आपकी ईमानदारी, सावधान रहें जबकि आप अभी जांच रहे हैं। मुझे जांचे प्रभु, मुझे परखें, क्या मुझमें कोई दुष्टता है? यदि वहाँ पर है प्रभु, मैं इसे ठीक अभी यहाँ यही निकाल फेंकूं। इस स्थान पर जहाँ मैं झुका हुआ हूँ, यह आपकी वेदी है, मैं इसे अभी यहाँ रखता हूँ। मेरे पैरों को इस पर रखते हुए जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो ये वहाँ पर पड़ा रहेगा, आपके लहू की सामर्थ इसे नष्ट करेगी। मैं एक जय पाने वाला होना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ तो है जो मुझे परेशान कर रहा है प्रभु, मैं आज सुबह जय पाने वाला होना चाहता हूँ। मैं आपके द्वारा कर सकता हूँ, मुझे बताया गया है कि आपके वचन के द्वारा। मैं इसे नीचे रखता हूँ प्रभु, और मैं इस पर अपने पैरों को रखता हूँ, जैसे कि मैं आज सुबह इस इमारत से बाहर निकलकर जाता हूँ, यह जानकर कि इसे परमेश्वर के ब्लीच यानी निरंजक के उस टप में डाला गया है, इसे और याद नहीं किया जाएगा। अब मैं इसे स्वीकार करूँगा और दया के लिए मांगूंगा। हमारे सिरों को झुकाने के साथ हमारी आँखें बंद है, हमारे हृदय सोचते हैं यही अब प्राण का द्वार है। क्या ऐसा कुछ है जिसे आप आज सुबह एक तरफ रखना चाहते हैं? कुछ तो ऐसा जिस पर आप जय पाना चाहते हैं, और आपने इसकी पूरी कोशिश की है, लेकिन आज सुबह आप अब कोशिश करना छोड़ रहे हैं। आप केवल वो स्वीकार करने जा रहे हैं जो उसने किया। मैं चाहता हूँ आप बस अपना हाथ उठाकर कहें, प्रभु मैं जय पाना चाहता हूँ, कोई एक बात मुझे परेशान कर रही है। प्रभु यीशु, आप उन हाथों को देख रहे हैं, अब आपके दास की नाई जीवित और मृत लोगों के बीच में खड़ा हूँ। मैं इन लोगों और खुद को परेशान करने वाली हर एक चीजों को दोषी ठहराता हूँ, और मैं इसे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। हम इसे यहाँ परमेश्वर की वेदी पर छोड़ सकते हैं और आज सुबह चलकर बाहर जा सकते हैं, मुक्त होकर जयवंत की नाई। यदि हमारी बहनें जिन पर पहले अनुग्रह नहीं हुआ था होने पाए, अब इसे होने के लिए प्रदान करें। यदि हमारे भाई जिन पर पहले अनुग्रह नहीं हुआ था होने पाए, अब इसे होने के लिए प्रदान करें। और होने पाए वे माताएं अपने बच्चों के साथ हट्टी होने की बजाय नम्रता पूर्वक रहें। वह जानती है कि वह बैठी हुई वह उन छोटे बच्चों के लिए एक उपदेशक है, उसका जीवन एक उदाहरण होने दो। पिता माँ के लिए एक उदाहरण हो, क्योंकि वह एक घर का प्रधान है। यदि माँ उस पर अधिकार करने की कोशिश करती आ रही है, वह अब इसे और न करे। यदि वो उसे जमीन की चटाई की तरह इस्तेमाल करते आ रहा है, तो उसे फिर से कभी नहीं किया जाए, वह एक सहायक है। इसे प्रदान करे प्रभु, ये सारी चीजें जो हमें बांधाएं डालती हैं प्रभु, ये दूर चली जाएं। हम खुद को समर्पित कर रहे हैं पिता, क्योंकि हमारे जो जीवन के आगे का समय है, यह जानते हुए हमें इसके अंत में आना होगा, और वह तुरंत ही होगा। सो आज सुबह हम इस संदेश के बाद इस अवसर को लेते हैं, हम आगे आने के अवसर को लेते हैं प्रभु, क्योंकि हम आने के लिए निमंत्रण किए गए हैं। अपनी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि वह आपकी चिंता करता है। मैं जानता हूँ आप चिंता करते हैं प्रभु, आपने इतनी चिंता की कि हमारे लिए मर गए, और हम निश्चय ही इतनी चिंता कर सकते हैं कि आकर और स्वीकार करें कि आप जिसके लिए मरे थे। हमें पवित्र करें प्रभु, हमें नए सिरे से पवित्र आत्मा से भरें। होने पाए कि पवित्र आत्मा अब हमारे हृदय में सर्वोच्च रीति से राज्य करे, कि हम चलेंगे बीती बातों को भूलते हुए। गंदगी और कीचड़ जिसमें हम एक समय रहते थे, हम उस ऊंचे बुलावट के निशाने की ओर बढ़ेंगे, जहां हमारा प्रकाश मधुरता और नम्रता में इतना चमके, इतना तक कि प्रत्येक वहां से गुजरने वाला व्यक्ति कहे, वहां उस पर्वत पर एक मसीह ही रहता है। वो व्यक्ति, वो महिला, वो पुरुष परमेश्वर का एक वास्तविक समर्पित फूल है। वे बहुत ही प्यारे और दयालु हैं, हमेशा ही प्रेमी और मधुर होते हैं और समझ को रखते हैं। इसे प्रदान करें पिता, हम नमकीन बने ताकि पृथ्वी प्यासी हो सके। इसे प्रदान करें पिता, और इस संसार की चीजों और इस जीवन की चिंताओं पर जय पाएं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं कर सकता हूँ, अब आइए केवल अपने हाथ को उठाएं। उद्धारकर्ता क्या बता रहा है, कीचड़ में से ऊपर आओ। एक उच्च जीवन आप में कुछ तो है, आपको इस तरफ खींच रहा है। ये क्या है? ये वो है। नीचे कीचड़ में छोटे छोटे फूल, आप में वो जीवन है जो आपको ऊपर ला रहा है, इसलिए आपको बुलाता है, कीचड़ में से ऊपर आओ। अनुकरण करें, अनुकरण करें। अब क्या आपका ये अर्थ है? अब अपनी आंखें बंद करें। वह जहां मुझे ले जाता है, मैं अनु अब समर्पण करें। इसका अर्थ अब यही है। वह जहां मुझे ले जाता है, मैं अनुकरण करूंगा। वह जहां मुझे ले जाता है, मैं अनुकरण करूंगा। मैं उसके साथ जाऊंगा पूरी तरह से। वह जहां मुझे ले जाता है, मैं अब बस मधुरता से याद रखें, खुद को वहां रखें। वह ले जाता है, मैं इसे याद रखूंगा। प्रभु, मैं अब से आपका अनुकरण करूंगा। मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। वो जहां ले जाता है, याद रखें, आपके मुंह की आवाज से ज्यादा आपका जीवन आपकी गवाही देगा। जो आप बोलते हैं, उससे ज्यादा आपका जीवन लोगों को साबित करता है। उसके साथ जाएं। किस तरफ? कहां? पूरी तरह से। बस अपने पूरे हृदय की गहराई से, ईमानदारी से अपने आप को समर्पित करें। क्या हो यदि ये आखिरी बार हो, आपको प्रार्थना करने की अनुमति दी गई हो? ये हो सकता है, मैं आशा नहीं करता, ये हो सकता है। तब निश्चित हो जाएं, वास्तव में निश्चित हो जाएं। याद रखें, एक दिन दरवाजा बंद हो जाएगा, उसके बाद यह सब समाप्त हो जाता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बस उस सारी महिमा के बारे में सोचे जिसे उसने आपको प्रदान किया है, जो कुछ भी उसने किया है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे जय पाने वाले हैं। मैं केवल आपके साथ चलना चाहता हूं प्रभु, मैं आपके साथ नजदीक बने रहना चाहता हूं प्रभु। जहां आप हैं, वहां मैं होना चाहता हूं। और याद है, आपने हमें बताया पिता कि हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे जब हम ऊपर उठा लिए जाएंगे। हमें बस अब उसकी एक झलक ही मिली है जब वो अब हमारे साथ चलता है, लेकिन तब हम यह कितनी महान बात है, केवल यह जानना कि वो हमारे बीच में है। तब क्या होगा जब हम उसके साथ हमेशा के लिए रहेंगे? हम अपनी सभी गतिविधियों से बहुत प्रेम करते हैं। हम गाड़ी चला सकते हैं, हम खरीदारी कर सकते हैं, हम शिकार मछली पकड़ने जा सकते हैं, या जो भी हम आनंद लेने में कर सकते हैं। लेकिन ओह, जब कलीसिया खुलती है, देखो, हम अपने परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, जो सब चीजों से सबसे बढ़कर है। तब सोचे, उसने हमसे प्रतिज्ञा की है और हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे, उसके साथ उसके सिंहासन में बैठेंगे और उसके साथ हमेशा के लिए रहेंगे। हे परमेश्वर, हम नम्रता पूर्वक झुके हुए सिरों के साथ हम इसे स्वीकार करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में। क्या आप महसूस करते हैं कि अब आप सब कुछ, हर एक बोझ को छोड़ सकते हैं? आप बस चलकर जा सकते हैं इस सब के ऊपर। यदि आप करते हैं तो अपना हाथ ऊपर उठाएं, कहें, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं इस परीक्षा को नीचे रखता हूं, मैं अब और नहीं लड़ूंगा, मैं बस उसके हाथों को पकड़ लूंगा, बस आगे चलना आरंभ करूंगा। मैं लड़ा हूं भाई ब्रैनम, मैंने सिगरेट छोड़ने की कोशिश की, मैंने अपने बालों को बढ़ाने की कोशिश की है, मैंने ऐसा करने की कोशिश की है, मैंने बहुत ही कड़ी कोशिश की है भाई ब्रैनम, मैं अब इसे नहीं कर सकता। अब इसे करने की कोशिश मत करें, केवल उसके हाथ को पकड़ लें, कहें, पिता, आप मेरे हाथ को आस्तीन में डालें, समझे, मैं अब आपको अपने हाथ को देने जा रहा हूं, मैं आगे चलूंगा प्रभु आपको देखते हुए। ऐसा ही होगा, ये आपको एक सच्चे मसीह की तरह कपड़े पहनाएगा, आप एक सच्चे मसीह बनेंगे। जब तक मैं आपको आज रात को नहीं मिलता, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके साथ रहे। आप मेरे सुसमाचार की संतान हो, आप खरीदे गए हैं। अब मैं आपके पास्टर को समाप्त करने के लिए वापस देता हूं। बाय ऑर्मन नेविल।